हरि जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारि जय। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारि जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारि जय। गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारि जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारि जय। गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारि जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारि यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारि जय।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार ज्योष्ठोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य विविटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कृष्ण श्याम कोणगिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा रस बिहारी ललिता विशाखा देवी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री जगन्नाथ कथामृतम की जय। हिताय गुरु प्रेमानंदे हरि हरि गुरु। ओम अज्ञानातिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरु श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सह गणा ललिता श्री विशाखानितांश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नम महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी पिछले कक्षा में आलोचना कर रहे थे कि किस प्रकार हमारे इस्कन की जो रथ यात्रा महोत्सव किस भावधारा से संपन्न की जाती है कि जिस भावधारा में गौरांग महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में श्रीक्षेत्रपुरी धाम में रथ यात्रा के उत्सव पर जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य करते थे उस समय गौरांग महाप्रभु अपने को क्या सोचते थे, मैं राधा रानी हूं, राधा भाव को आस्वादन करते थे। राधाया प्रणय माधुरी किदृशवा नैवा साध्य येन अद्भुत माधुरी मा किदृशवा मदीय सौख्यम चाश्य मदनुभवत किदृशम व्यति लोभा तद्भवाढ़ समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि गौरांग महाप्रभु आविर्भाव होने के तीन अंतरंग कारण है। जैसे हम पहले चर्चा की कि गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। लेकिन ब्रज लीला में जब वृंदावन में भगवान ने लीलाओं को प्रकट किए थे, भगवान श्री कृष्ण गोपियों की भक्ति व राधा रानी की भक्ति को देखकर उनकी भक्ति के सामने वो ऋणी रह गए थे। उन्होंने इसको घोषित किया था कि ये गोपियां आप लोग जैसे मेरी भक्ति किए हो, मेरे पास में ऐसे कोई पदार्थ नहीं कि मैं इसको आपको आपकी ऋण चुका सकूं, आप अपने भक्ति में ही संतोष रहना। लेकिन भगवान को यह समझ में नहीं आता था कि ये लोग मुझे बिना कारण से इतने प्रेम क्यों करते हैं, मुझे क्यों प्यार करते हैं, राधा रानी मुझे इतनी प्रेम क्यों करती है। इसलिए राधाया प्रणय माधुरी किद्री सेवा, कैसे है राधा रानी का प्रेम मेरे प्रति, जो राधा रानी के प्रेम की जो भावना है वो कैसा है?
और मेरे पास में ऐसा कौन सा अद्भुत माधुरिमा है जिसके लिए राधारानी मेरे प्रति आकर्षित होती है। कभी कभी भगवान ने अपने अद्भुत रूप माधुरी को द्वारका में मणिमय खम्भ में बा स्वच्छ जल में देखते थे तो आश्चर्यचकित रह जाते थे, व्यक्ति कौन है, स्वयं को स्वयं आलिंगन करने की इच्छा प्रकट करते थे। तो इसलिए अभी भगवान के पद पर बैठे तो भक्त की भाव को कैसे स्वीकार अंगीकार माने कैसे आस्वादन करेंगे है? तीसरे इच्छा उनकी था कि मुझे जो राधारानी इतनी प्रेम करती है तो उसमें से कुछ ना कुछ सुख इनको अनुभव होता होगा। किसको? राधा को। यदि कोई आनंद व सुख अनुभव नहीं होगा तो वो कोई कार्य वो व्यक्ति नहीं करेगा। तो इसलिए कहते थे कि राधारानी जी मुझे प्रेम करती है और प्रेम से जो उसको सुख मिलती है आनंद मिलती है वो कैसा है, राधारानी का जो आनंद अनुभव होता कैसा है। यदि मैं भगवान के पद पर बैठूंगा ये आनंद को आस्वादन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे भक्त भाव को अंगीकार करना पड़ेगा। राधा भाव असुवलिता तनु, इसलिए भक्त भाव को अंगीकार करके ही कृष्ण स्वयं गौरांग के रूप में पधारे थे, गौरांग के रूप में आए थे और जगन्नाथपुरी में आकर उसी भाव से भावित रहते थे कि मैं राधारानी हूं और ये जगन्नाथ है कौन, कृष्ण है। आचार्य लोग ने कहते कि प्रकृत में इसीलिए श्रीक्षेत्रपुरी को कहते कि विप्रलंब धाम है, यहां पर दो भगवान एक साथ में रहते, गौरांग महाप्रभु वो भी कृष्ण है और जगन्नाथ भी कृष्ण है और दोनों भगवान को रो रहे, ये भी रो रहे वो भी रो रहे हैं, एक दूसरे का विच्छेद को अनुभव कर रहा है। जगन्नाथ बैठकर पुरी में सिंहासन में वो रो रहे किसके लिए, जगन्नाथ किसके लिए रो रहे, राधा रानी के लिए। वो कहते मैं राधा कहां है, वो तो द्वारका में बैठे हुए, निराचर जो है वो द्वारका है, मंदिर में बैठकर सिंहासन में ऐश्वर्य में गति मेरी राधा, राधा के विच्छेद में जगन्नाथ राधा के भाव से विवलित होकर महाभाव रूप को प्रकट करते हुए वो उसी भाव से देख रहे हैं, कहां है मेरा राधा। राधा भाव से भावित होकर बा राधा रानी के विच्छेद में वो दुख अनुभव करते हुए जगन्नाथ जी ने राधा के लिए विच्छेद को अनुभव कर रहे हैं और वो दूसरे कृष्ण बैठे गौरांग वो अपने को राधा रानी समझते हुए वो सोचते मेरा कृष्ण कहां है, कृष्ण विच्छेद को अनुभव कर रहे हैं। इसलिए आते थे जगन्नाथ जी को जो मंदिर में देखते थे यही मरो यही तो रथ के ऊपर देखते थे, जगन्नाथ जी रथ में बैठे हुए तभी महाप्रभु ने कहते थे कि सही तो प्राणनाथ पाइनु जहां लागी मदन दहने छुरी गेनु, यही तो मेरा प्राणनाथ है। सोचते थे मैं तो कुरुक्षेत्र में आ गया हूं, यही जो द्वारका से उतरकर भगवान ने जो मंदिर से श्रीमंदिर से उतरकर आ गए वरदान के पर रथ में, वो कहते कि ये कुरुक्षेत्र आ गया हूं और मेरे प्राणनाथ तो ही बैठा है रथ में, कौन, कृष्ण। वो कृष्ण बलराम सुभद्र आए हुए कुरुक्षेत्र में सूर्य पराग में स्नान करने के लिए, तो वही भाव उनके मन में आ जाता है, पूरे संसार को सब कुछ भूल जाते हैं, सोचते कि यही मेरा प्राणनाथ कृष्ण बैठा है रथ में और स्वयं को क्या सोचते मैं राधा रानी हो। और जगन्नाथ भी बैठ के जो महाप्रभु को देखते सत्य बोलते यही तो मेरे वही प्रियतमा राधा है, ऐसे ही दोनों को भाव से भावित तो होते हैं है? और दोनों में कंपटीशन भी चलता है कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। जैसे रथ यात्रा के प्रारंभ से गौरांग महाप्रभु अपने सारे पार्षदों को लेकर आए, पहले से वो कथा आलोचना हो चुकी है बाकी बार तो इसलिए मैं इसको नहीं बोलूं, लेकिन रथ यात्रा प्रारंभ में ही शुभारंभ हो रहा तो महाप्रभु ने अपने सारे पार्षदों को इकट्ठी किए और कीर्तन प्रारंभ करने के लिए जा रहे थे, तो कहीं कि सब चार मुख्य पार्टी बांट दिए और उस प्रत्येक कीर्तन पार्टी में काल जो रथयात्रा उत्सव में हम भी सब कीर्तन में नाचेंगे गाएंगे, लेकिन महाप्रभु के कीर्तन में नाचने का जो भावधारा है बस एक कीर्तन का लीडर रहेगा जो गाने वाला है, करताल बजा के गाएगा और दो मृदंग बजाने वाले रहना चाहिए, उसके पाली धरने वाले कम से कम 8 लोग पाली धरेंगे उनके साथ में करताल लेकर और उसके साथ कीर्तन के साथ जाएंगे। प्रत्येक कीर्तन ग्रुप में एक गाने वाला लीडर और एक नाचने वाला रहेगा, नृत्य करने वाला रहेगा। गौरांग महाप्रभु की जो संकीर्तन पार्टी तो उसमें चार जो मुख्य पार्टी पहले महाप्रभु ने निर्धारित किया था, सबसे पहला ग्रुप में जो गाने वाले थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, नाचने वाले थे अद्वैताचार्य और इनके साथ में पाई धरने वाले और कई लोग थे। दूसरे ग्रुप में उन्होंने शिवास ठाकुर को कहा कि आप गाओ और नित्यानंद यहां पर नृत्य करेंगे। तीसरे ग्रुप में उन्होंने कहा कि मुकुंद दत्त तुम गाओ और यहां पर कौन नाचेगा? हरिदास ठाकुर नाचेंगे, रामाचार्य हरिदास ठाकुर नाचेंगे। चौथे ग्रुप में महाप्रभु कहे कि यहां पर गोविंद घोष तुम गाओ, और यहां पर बक्रेश्वर पंडित नृत्य करेंगे। ऐसे जगन्नाथ जी के सामने महाप्रभु ने चार कीर्तन पाटी रख दी, रथ के सामने चार कीर्तन पाटी, चार लीडर के साथ अलग अलग चार ग्रुप। इसके साथ कहे कि और देखिए कि और भी कीर्तन करने वाले सब आ गए हैं। शांतिपुर से अच्युतानंद अपने कीर्तन पाटी लेकर आए हैं, अद्वैत आचार्य के पुत्र। शिखंड से वहां पर गांव नवहरी सरकार और रघुनंदन ठाकुर, वो लोग भी कीर्तन पाटी लेकर आए। तो इनको दोनों साइड रख दिए, एक दोनों साइड रथ के एक साइड, दोनों साइड में एक एक ग्रुप। और पीछे देखिए फिर भी सत्यराज और रामचंद्र खान वो कुलीन ग्राम से पार्टी लेकर आए, तो उनको कि आप पीछे रहो। इस प्रकार सात कीर्तन पार्टी को निरोध करके महाप्रभु कीर्तन करते करते चलते ही रहे हैं जगन्नाथ जी के रथ के सामने। और वैष्णव सब पागल हो गए, एक साथ में 14 मृदंग बाजा। कितने मृदंग बाजे? चार चार कीर्तन पार्टी है और दो मृदंग हर ग्रुप में, एक साथ में 14 मृदंग बाज रहा था। तो वैष्णव सब हई लो पागल, वैष्णव पागल हो गए और कुछ नहीं समझ पाए। सब लोग नाच रहे थे और गा रहे थे। महाप्रभु प्रत्येक ग्रुप में मेरे सुपरवाइज करते थे कि सब ग्रुप में ठीक कीर्तन चल रहा है कि नहीं है। और महाराज प्रताप रुद्र अपने राज प्रसाद के ऊपर खड़ा होकर देख रहे थे कि गौरांग महाप्रभु एक साथ में सारे सात कीर्तन पार्टी में उपस्थित है। हर कीर्तन पार्टी में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। इसको देखकर आश्चर्यचकित रह गए राजा, ये कैसा संभव है? एक व्यक्ति एक साथ में सात कीर्तन पार्टी में नृत्य कर रहा है। तभी उन्होंने सर्वम भट्टाचार्य को और काशी मिश्र को बुलाकर बोलते थे, देखो देखो चैतन्य, ये कैसे असंभव है? महाप्रभु कैसे सात ग्रुप में एक साथ में नृत्य कर रहे हैं? तभी कहे कि समझ गए कि गौरांग महाप्रभु की कृपा इनके प्रति हुई है। किसके प्रति? महाराज प्रताप रुद्र के प्रति। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु फिर स्वयं अकेले नृत्य करने के लिए जब इच्छा हुआ, ये सारे ग्रुप को इकट्ठी कर लिया। दूसरे दूसरे जो कीर्तन का पार्टी, सब पार्टी को कही सब इकट्ठी हो जाओ, सात कीर्तन पार्टी इकट्ठी हो गए और महाप्रभु नृत्य करने के लगे। और स्वरूप दामोदर को कहे कि तो आप गाओ। और इन्होंने कई प्रकार की गीत महाप्रभु के भाव को समझते हुए गाते रहे। और कैसे, जैसे महाप्रभु सोचते थे कि मैं अभी राधा हूं, और ये कुरुक्षेत्र के जो वही कुरुक्षेत्र के मैदान है जहां पर ये जगन्नाथ बलराम सुभद्रा द्वारका से आए हुए हैं सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए। और तो वो भाव विवरण कर नृत्य करने लगे। जगन्नाथ बैठकर रथ के ऊपर उनके नृत्य को देख रहे थे। जगन्नाथ बलराम तीनों के मुख में हंसी आ गया गौरांग महाप्रभु के नृत्य देखकर। तभी कभी कभी महाप्रभु परीक्षा ले रहे थे राधा भाव से, कहते थे कि अच्छा ये जो कृष्ण बैठा है जगन्नाथ में, जगन्नाथ जो बैठा है रथ में कृष्ण के, कृष्ण ये हम लोग को ये याद रखा कि नहीं ब्रजवासियों को? इसलिए थोड़ा पीछे चले जाते थे, कोई बड़े रथ के सामने से पीछे रह जाते थे। जगन्नाथ जी ने समझ जाते थे महाप्रभु के भाव को, फिर रुक जाता था रथ, फिर वो सामने आ जाते थे। तो आकर फिर कहते थे कि सही तो परानाथ पाई नो, फिर जगन्नाथ कहते थे देखो मैं भूला नहीं आपको। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि जगन्नाथ को बताना चाहते थे कि हम नहीं भूला ब्रजवासियों को, आप लोग को भूला नहीं। तो इस प्रकार कई प्रकार सुंदर वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में करते हैं। किस प्रकार दोनों में बात चलता बातचीत है, किसके किसके? चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ है। प्राणनाथ सुन मोरा सत्या निवेदन, ब्रज अमर सदन ताहा तुमार संगम, ना पाइले ना रहे जीवन। हे प्रभु मेरी विनती सुने, मेरा पर मेरा घर वृंदावन है और मैं वहां आपका सानिध्य चाहती हूं, किंतु यदि मुझे सानिध्य नहीं मिला तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। कौन कह रहे? गौरांग महाप्रभु कह रहे अपने राधा भाव से भावित होकर। पूर्वे उद्धव द्वारे एबे साक्षात अमारे, जोग ज्ञाने कहिला उपाय, तुमी विदग्ध कृपामय जान अमार हृदय, मेरे इच्छे करीते ना जुआ। कहे क्या बहुत छलिया हो, पहले कब उसको भेज दिए थे? किसको? उद्धव को भेज दिए मेरे को आकर जोग सिखा देने के लिए, जोग ज्ञान सिखाने के लिए। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, सांख्या योग का फिलोसफी सिखाने के लिए इसको भेज दिए। और अभी साक्षात भी है इधर बैठ के, मेरे को भी सोचते कि मेरे को और कुछ फिलोसफी सिखाओगे। जोगो ज्ञाने कही लाओ, लेकिन आप विदग्ध नागर हो, आप कृपामय हो और मेरे हृदय को आप जानते हो, चाहे संसार में और कोई जाने न जाने लेकिन आपको मेरी हृदय की भावना पता है, ऐसे मेरे साथ में ऐसे ही व्यवहार करना सही नहीं है। राधा भाव से भावित होकर महाप्रभु ने कह रहे, किनको कह रहे, जगन्नाथ जी को, पूरा बाहु दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए नृत्य करते हुए अंग भंगी के साथ जगन्नाथ जी को कह रहे हैं। तो इसी प्रकार उन्हें बोलते रहे कि पागल की तरफ बोलते गए, नहे गोपी जोगेश्वर पद कमल तुम्हार ध्यान करी पाई बे संतोष, तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी सुनी गोपीर आरे आरो बाढ़े रोस। आप जैसे कुटे ऐसे बक्र बात करते हो उल्टे, मैंने क्या गोपियां सब जोगेश्वर नहीं है, जोग ध्यान करने वाले नहीं है, ध्यान करी पाई बे संतोष, ध्यान करके संतोष उनको नहीं मिलेगा, और आप ऐसे बात करते हो कुटनाटी है, आप खड़े होने वाले त्रिभंग सीधे भी खड़े नहीं होने वाले, भगवान हमेशा टेढ़े खड़े रहते हैं, और बात भी जो करते हैं वो टेढ़े थोड़े, कई मीनिंग होता है, एक एक बात करेंगे उस बात का कई मीनिंग होता है। मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाया है ना, बोले बोल दे जसोदा माखन चोरी खाते तो पकड़ लियो, जसोदा माता ने कहे कि नहीं मैंने मैं माखन नहीं खाया है, आज जो देखे माँ जसोदा ने देखे कि और तो दोनों की बातचीत तो सुने वो गीत एक बार अंत में कह दिए कि हाँ हाँ माता मैंने ही माखन, और एक ही बात है लेकिन थोड़ा बोलने में थे बहुत चतुर है, भगवान ने कैसे कैसे बात को बोला कि घुमा के फेर के फिर साबस्त कर देते, वो जो कहे सच कह रहे हैं। श्री राधारानी ने कहा राधा भाव से गौरांग महाप्रभु कहते कि तुम्हारा वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी सुनी गोपी रहा आरो बढ़े रोसो, मेरे गोपियों को देखकर बात को सुनकर आपके व्यवहार देखकर बड़ा गुस्से आ रहा है, ऐसा करना भाव व्यवहार करना हमारे साथ में सही नहीं है। ऐसे ही राधा भाव से भावित होकर गौरांग महाप्रभु तो बोलते गए गाते गए अपने भाव को व्यक्त करते हुए, जब तो फिर अंत में जगन्नाथ जी ने उसको उत्तर देते हैं कि देखो राधारानी कहते कि आप यदि हमारा बात नहीं सुनोगे और तब ये जीवन में धारण नहीं कर पाओगे, और मैं स्वार्थ पर भी नहीं हूं कि आपने के लिए केवल प्रार्थना कर रही हूं, मैं तो सोच रही हूं आपके पिताजी के बारे में, नंद महाराज के बारे में, जसोदा मैया के बारे में, सारे आपकी गोलबाल सुखा के बारे में, ये सब भी मरणासन्न है, मां जसोदा की स्थिति क्या है और आप ब्रज में नहीं आ रहे हो, ठीक नहीं, आपको आना ही चाहिए ब्रज में। राधारानी रोते, राधा भाव से रोते रोते गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ जी को हाथ दिखाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे गा रहे गीत। तो इसको देखकर जगन्नाथ फिर बोल रहे, हम नहीं सुन पा रहे, कई दूसरे नहीं सुन रहे, जगन्नाथ बोल रहे और सुन रहा कौन, गौरांग महाप्रभु सुन रहे, कह के तो मैं क्या कहूं कि प्रकृति में आप मेरे हृदय को नहीं समझ रहे, मैं क्या ये द्वारका में रहना चाहता हूं, मैं भी ब्रज में जाना चाहता हूं, लेकिन ज्यादा वालों की विपद देखकर मेरे थोड़ा वो लोग भी मेरी भक्ति किया है, वो लोग भी मेरे भक्त है, तो उस लोग को थोड़ा सहायता करने के लिए आया था। जादवेर विपक्ष जत दुष्ट कंस पक्ष ताहामी कैलु सबक्षय, आछे दुई चारि जन ताहा मारी वृंदावन आईलाम आमी जानी है निश्चय। कहीं मैं आया था कंस को वध करने के लिए, वो मेरे देव की वसुदेव को जादवों को बहुत कष्ट दे रहा था, उसको तो वध कर दिया और कई राक्षस को वध कर दिया, और भी दो चार और लोग बच गया है, शिशुपाल दंतवक्र और कई लोग बचा हुआ दो चार, उनको वध करने के बाद बहुत जल्दी तुम समझ लो कि आ ही गया हूं, कहां वृंदावन आ ही गया हूं, इसलिए आप चिंता मत करो और आप मेरे को ऐसा ही कपटी और कठोर हृदय वाला ऐसे मत बोलो, मैं बड़ा दयालु हूं, मैं भी तुम्हारा हृदय को समझता हूं। ये तो कही कृष्ण ब्रजे जाई ते शत्रुष्ण, एक श्लोकी श्लोक पढ़ी सुनाइल, से श्लोक सुनी राधा खंडिल सकल बाधा कृष्ण प्राप्ते प्रतीत हईल। श्रीमती राधारानी से बात करते हुए कृष्ण वृंदावन लौटाने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे, ऐसे बोलते बोलते कृष्ण भी बड़े भावभीत होकर कहे कि मैं आऊंगा, चिंता मत करो, मैं वृंदावन आने के लिए बड़े भी भावित हो गए और एक श्लोक पढ़कर सुनाया, जैसे राधारानी पूरा कन्विंस हो जाए कि हाँ निश्चित रूप में आने वाले हैं वृंदावन। तो उन्होंने एक श्लोक पढ़कर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि तो कृष्ण एक श्लोक पढ़कर सुनाए किसको, राधारानी को एक पद गा के सुनाए, मई भक्ति ही भूतानम अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्वा यदासीन् मत्सेहो भवतीनां मदापनः। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि मेरी भक्ति करना। हे गोपियां, तुम लोग ने सौभाग्यवश मेरे जितना भी स्नेह एवं प्रेम प्राप्त कर रखा है उसी के कारण मैं अभी निश्चित रूप में ब्रज में वापस जाने वाला हूं। मैं ऋणी हूं आप लोग की भक्ति में, इसमें कोई संशय नहीं है। जगन्नाथ जी ने ऐसा बोलकर बोलकर कन्विंस कर दिया किनको? गौरांग महाप्रभु को, जो राधा भाव से भावित थे। हाँ, और चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप में ब्रज में आ जाऊंगा। अभी जब चैतन्य महाप्रभु थोड़ा शांत हो गए, जो गा रहे थे फिर गीत गाना बंद कर थोड़ा सा जगन्नाथ जी की तरफ देखे, फिर भक्तों को नृत्य करते प्रकृतिस्थ हो गए। तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य करते थे गौरांग महाप्रभु, इनको खींच के ले जा रहे थे। मैं ले जा रहा हूं जगन्नाथ को कुरुक्षेत्र से कहा वृंदावन, इसी भाव से। अब जब वृंदा हमारे जो स्कन में भी रथ यात्रा उसी भाव से हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि हम ले जा रहे हैं कहीं भी जगन्नाथ रथ का रथ को खींचते हैं तो सोचते कि हम ब्रजवासियों की अनुजाई हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के यही सिद्धांत है। आराध्य भगवान ब्रजे सतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण जाकल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदरनापरः। गौरांग महाप्रभु की ये मत है। आराध्य देव हमारा कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु। इसलिए जो जगन्नाथ को देखते थे भाव विवल कर ज ग ग ग ग करते थे, पूरा नाम उच्चारण नहीं कर पाते थे, वाणी गदगद हो जाता था। जगन्नाथ को देखते थे किस रूप में देखते थे? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में देखते थे। कहते थे कि महाप्रभु कहते थे कि कृष्ण शब्द का ज्यादा अर्थ नहीं है, कृष्ण शब्द के सिर्फ दो ही अर्थों में स्वीकार करता हूं। कृष्ण शब्देर बहुअर्थ नामानी जसोदानंदन श्याम सुंदर दुई मात्र जानी। कहे कि कृष्ण शब्द का ज्यादा अर्थ नहीं है, दो ही अर्थ में स्वीकार करता हूं। क्या क्या? जसोदानंदन और श्याम सुंदर। जसोदा की लाला है, वात्सल्य के जो चरम उदाहरण है वो है जसोदा माया। जसोदा माया की वात्सल्य के साथ में किसी की वात्सल्य का तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए जसोदानंदन के नाम से परिचित है। दूसरे श्याम सुंदर, क्योंकि राधारानी ने इनको श्याम सुंदर कहकर पुकारती है। किनको? कृष्ण को, जगन्नाथ को, वो श्याम सुंदर है। तो इसलिए आराध्य भगवान बजे सतनय, और जिस प्रकार भगवान आराध्य है उसी प्रकार उनके धाम वृंदावन भी हमारा आराधना की स्थली है। ब्रजवासी बा जो ब्रजभाव से भावित है, जो गौड़ीय वैष्णव और सब समय वृंदावन वृंदावन धाम में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर सारे ब्रज की लीलास्थली है। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड कालिंदी जमुना जय जय महाब केसी घाट बंसी बट द्वादश काना
बटम केसी घाट वंशी बटम जहाँ सब लीला कैलासी नंद नंद जहाँ सब
तो ये नंदनंदन के सब लीला स्थल है कहाँ वृंदावन है जहाँ पर सब लीला स्थल गौड़ीय वैष्णव वही जाना चाहते कहाँ वृंदावन आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना भगवान को प्राप्त करने के उपाय क्या है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्लोक में कहते कि ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता जैसे ब्रज गोपिया ने भगवान को प्रेम की है उनको प्राप्त करने के लिए जैसे स्वतस्फूर्त भाव से भगवान के प्रति आकर्षित थे ऐसे ही उसी भाव से रागानुभव भक्ति के माध्यम से भगवान कृष्ण को ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त की जाती है साक सकल जगत मरे करे विधि भक्ति विधि भक्ते ब्रजभाव पाईते नहीं सकती है भगवान कहते कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किसी लिए मैं आविर्भाव हुआ हूं इस संसार में क्योंकि संसार में सभी विधि भक्ति करने लगे हुए हैं कोई केवल ये सब फॉर्मेलिटी बना दिए लेकिन उसका उद्देश्य नहीं समझ रहे भक्ति कर रहे हैं विधि पालन कर रहे लेकिन विधि का उद्देश्य क्या नहीं समझ रहे हैं विधि विधि भक्ति ब्रजभाव पाईते नहीं सकती ब्रजभाव को प्राप्त करने की शक्ति नहीं है इसलिए मैं सिखाने के लिए आया हूं आचरण करके सिखाऊंगा अपने आचरी भक्ति सिखाऊ सवारे अपने आचरी प्रभु सिखाए जिबेरे सिखाए सिखाते हैं कैसे भक्ति करना है गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण भक्त भाव को अंगीकार करके आए और सिखा रहे कैसे ब्रज की भक्ति में कैसे कृष्ण के प्रति कैसे आकर्षित होना है इसलिए उसी ब्रजगोपियों की भावधारा को प्रेम भक्ति को उसी अंगीकार करके ही स्वतस्फूर्त भाव से ही भगवान के प्रति आकर्षित होना विधि से भगवान आए तो नहीं होते लेकिन प्रेम भी भगवान के प्रति प्रेम जो प्रेम करता है जगन्नाथ जी भी प्रेम के ठाकुर है इसलिए वो रामानंद जो आचार्य जी को उठा के फेंके दिए कहा पूरी से उठा के फेंक दिया आंध्र बॉर्डर में जाओ उधर या नहीं चलेगा जगन्नाथपुरी में वो भी आए थे कि नारद पंचरात्र की विधि भक्ति सिखाने के लिए लेकिन वो जगन्नाथ जो तो उनको उठा के फेंक दिए रामानुज आचार्य सोए थे पुरी में सुबह उठे तो कुरुक्षेत्र में जगन्नाथ कहे कि यहां नहीं चलेगा यहां जो मेरी प्रेमी भक्त मुझे जिसे प्रेम करते ही चलता है प्रेम से मैं प्रेम की भूखा हूं है जो ना जगन्नाथ जी जो प्रेम का तो दासिया बावरी के लड़िया नारियल खा रहे हैं खाने वाले हैं है? और सबरी की झूठे बेर खाने वाले सबरी खिलाई झूठा झूठा बेर खिलाई विदुर की पत्नी ने केला के छिलका खिला दी दुर्जधन का मेवा त्याग साध विदुर घर खाई तो ऐसे ही भगवान है इसलिए कहते महाप्रभु ने गौड़ीय सिद्धांत कहते कि ब्रजवधु वर्गण जा कल्पिता गोपिया ने जैसे भक्ति की प्रेम से जैसे राधारानी की और उनकी अनुजाई सारी गोपियां राधारानी को अनुसरण करती हुई जैसे भगवान को प्रेम की है कोई वापस में कुछ नहीं चाहिए एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है हम भक्ति करते कि नहीं भक्ति करते तो कुछ मिलना चाहिए प्रहलाद महाराज कहते कि भक्ति करके जो वापस में कुछ चाहता वो कौन है बिजनेसमैन है 900 भक्त सवाई बणिक व्यापारी है भगवान के व्यापार करने के लिए भक्ति मत करो बस निष्काम भाव से कुछ चाह मांगो मत आपको क्या जरूरत है भगवान को पता है भगवान से ज्यादा आपको पता नहीं है आपको क्या जरूरत है भगवान को पता है निष्काम भाव से नृसिंह भगवान जो बोल रहे थे प्रहलाद को मांगो मांगो कुछ ले लो कह क्या अरे मैं राक्षस कुल में जन्म लिया हूं आप ऐसे लोभ क्यों दिखा रहे मुझे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए बिजनेस के लिए भक्ति नहीं किया हूं कि आपकी भक्ति कर लिया और वापस में कुछ ले लूंगा ऐसा कि इसी भावना नहीं रखा हूं धन जन कविता सुंदरी ये भक्तों को नहीं चाहिए निष्काम भगवान को प्रसन्न करना एकमात्र गोपियों की इच्छा था इसलिए ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता ये कहां प्रमाण है श्रीमद भागवतम भागवत में प्रमाण दी गई है धर्म अर्थ काम मुख्य ये तो साधारण लोग कहते भक्ति ये मुख्य भी भक्तों की इच्छा नहीं है प्रेम अपमार्थ महान भक्त तो भक्ति इसलिए करते कि भगवान के चरण में प्रेम को प्राप्त करने के लिए है दूसरे इच्छा नहीं रहता है ऐसा ही भावना में लेकर चैतन्य महाप्रभु हमको स्वयं आचरण करके सिखा रहे थे रथ के सामने नृत्य करते थे और रथ को खींच रहे थे ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आया और नृत्य कर रहा था लेकिन ठीक है, लेकिन नित्य नृत्य का वो रथ के सामने जगन्नाथ जी को देखकर उसकी मन में एक भावना आ गई। वो चाहता था कि हे प्रभु मुझे ऐसे एक पुत्र दीजिए जो कि आपकी महिमा को गायन करेगा। तो जगन्नाथ जी उसकी प्रार्थना को स्वीकार किए। भोज वो उसके नाम था भोजदेव, बंगाल से आया था, बंगाल से और बामा देवी पुत्र से, बामा देवी और भोजदेव दोनों पति पत्नी थे, आए थे। जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर रहे थे कि हमको पुत्र चाहिए। जगन्नाथ जी ने उनकी प्रार्थना ऐसे ही जो जगन्नाथ उनके प्रार्थना को स्वीकार किए, लेकिन जब उन्होंने जगन्नाथ जी की प्रार्थना करके देख रहे थे, हटात देख रहे थे कि जगन्नाथ स्वयं उनके जैसे उनके हृदय में प्रवेश कर रहे थे। उनको पता तो चक्र आया, पूरा मूर्छित होकर समाधिस्थ होकर नीचे गिर पड़े। पास में बंगाल के राजा थे लक्ष्मण सेन, उनको उठाकर लिए, क्या हुआ समझाए, उनको बोल रहा लेकर साथ में गए। लेकिन उनकी प्रार्थना से ही बामा देवी की गर्भ से एक पुत्र जन्म हुआ। क्या नाम था उनकी, कौन जानते, बामा देवी और भोलेदेव के पुत्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है, गीत गोविंद की रचयिता कौन, जयदेव गोस्वामी। पढ़ी उसमें जयदेव गोस्वामी लिखते हैं 12वें सर्ग के अंतिम श्लोक में लिखते हैं कि भोजदेवस्य बामा देवी सुत अभवत, इनके भोजदेव और बामा देवी के पुत्र के रूप में उनकी परिचय देते हैं स्वयं जयदेव गोस्वामी। भगवान के भक्त चरित्र में जयदेव एक उज्ज्वल ज्योतिष के समान है। जयदेव के बिना, जयदेव के गीत गोविंद के बिना जगन्नाथ जी की लीला को पूरा माने यदि कोई कहा तो असंपूर्ण रह जाता है, क्योंकि जगन्नाथ जी ऐसे ही माने जाते कि ये गीत गोविंद के ठाकुर है। जब वो उठते हैं तो बिस्तर से सुबह किसको सुनकर उठते हैं, गीत गोविंद को सुनते हैं। आज जयदेव गोस्वामी की जो रचना गीत गोविंद की, सबसे पहले जो मंगलाचरण जो 10 अवतार के सूत्र है, आज भारत में कोई ऐसे डांसिंग पार्टी नहीं कि उसको नहीं जानता है। जितने भी जाए, चाहे ओडिसी डांस को हो, कथक को हो, भारत नृत्यम नृत्यम को हो, हर नृत्य करने वाले पहले उसको गाते और नाचते हैं। किसको, गीत गोविंद के मंगलाचरण में लिखा गया 10 अवतार स्तुति, केशव धीत मीन शरीर, हम भी डेली एक पद गाते हैं इस कर में, कौन सा नृसिंहदेव चौथा अवतार, केशव धीत नर हरि रूप। जयदेव गोस्वामी की जो गीत है भगवान को प्रिय, हजार हजार साल पहले वो लिखे थे, लेकिन आज भी वो गीत लोग गाते हैं और आनंद लेते हैं। जगन्नाथ जी को बड़ा प्रिय है गीत गोविंद, इसलिए जयदेव गोस्वामी बंगाल में तो जन्म लिए थे केंदुबिल्ले गांव में और लेकिन बचपन में तो उनके माता पिता कुछ समय के बाद उनके देहांत हो गया, लेकिन ये बड़े भक्त थे, महान भक्त, दिन रात भजन में ही बिताते थे। इनके गांव के पास में एक छोटा नदी था जया नदी, उसमें से इनको एक विग्रह भी प्राप्त हुए थे। जयदेव गोस्वामी के जो विग्रह कौन है, राधा माधव, राधा माधव को पूजन करते थे। इसके सुजोग में उनके गांव के एक ब्राह्मण था, उसका नाम था निरंजन, वो देखा कि ये तो बड़ा भला भला बालक है, जाता हूं उसको बोलूं को इसका सारे घर का जो संपत्ति है ये तो जाता है सब लूट लूं, इसका पाता पिताजी माता चला गया। इसको बोले कि देखो तुम्हारा पिताजी मर गया है, लेकिन मेरे पास में ऋण ले गया था, कर्जा ले गया था, जो फॉल्स कागज ऐसे में साइन करके लिख के खुद साइन मार के दिखा दिया, देखो पिताजी का साइन है, और तुम्हारा पिताजी ने हमसे इतना कर्जा लिया था, धन ले गया था, और तुमको इसको देना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी तो मर गए तो देव नहीं तो तुम्हारा घर का ये सब दे दो सामान जो है। जो देखो कि ले जाओ सामान, हमारे सामान के साथ कोई संपर्क नहीं है। बड़ा खुश हो गया, अरे बिना कारण दे, इनके घर से तो बहुत चांदी सोना बहुत है, उसके पिताजी तो धनी था, तो वो घर में जो लूटने के लिए प्रवेश कर रहा था उसका खुद के घर में क्या हो गया, आग लग गया। वो निरंजन जो आया था इनके घर में प्रवेश करके लूटने के लिए जा रहा था, तो उसका खुद का घर में आग लग गया, पूरा घर जलने, तो उसकी लड़की भागते भागते, पिताजी हमारे घर में आग लग गया, आप अपने आप आग लग गया, आइए संभाल। वो यहां से जो सोना रूपा पकड़ा था चांदी से लेके जाने के लिए भागा, फिर देखिए आग जल रहा है उसके घर में है। वो समझ गया कि मैं जो ऐसे अन्याय करके ही जयदेव का संपत्ति को लूटना चाहता था, भगवान ने इसको सहन नहीं किया। वो कोई और आए न रहे, लेकिन जयदेव को स्वयं जाकर फिर उसके आग को बुझा रहे थे पानी डालकर। लेकिन ऐसे घटना सब देखकर लोगों की ऐसे कपटता को देखकर जयदेव सोचे कि अरे यहां रहना ठीक नहीं है, इन्होंने घर छोड़कर आ गए कहां, जगन्नाथ पुरी, पुरी में आ गए। इसके बीच में कहते कि जगन्नाथ पर हमने उन्होंने जब गीत गोविंद रचना के दस अवतार स्तोत्र रचना की उसको देखकर बंगाल के जो राजा थे लक्ष्मण सेन वो बड़े प्रसिद्ध बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको राज कभी बना के अपने पास में रखना चाहते थे, किनको, जयदेव को। और लेकिन जयदेव उसमें सम्मत नहीं हुए, बोले मैं राजा की और न खाने के लिए तैयार नहीं हूं। महाप्रभु भी कहते राजदर्शन वैरागी को नहीं करना चाहिए, वैरागी निष्किंचनस्य भगवत भजन मुखस्य परंपरम जिगीमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयी नाम अथ जो सीतामच हा हंत हंथ विषभक्षण अपि असाधु, साधु नहीं है लेकिन घर बार छोड़कर वैराग्य आश्रम लिया फिर विषयी व्यक्ति और सब स्त्री को उपभोग करने में फिर धन और स्त्री के पीछे फंस जाता है, वो असाधु है, साधु नहीं है, क्योंकि मैं राज महाप्रभु ने इसलिए गौरांग महाप्रभु कहते कि मैं प्रताप रुद्र को दर्शन नहीं दूंगा कि राजा है विषयी है। इसी प्रकार जयदेव कहे कि नहीं मैं ये लक्ष्मण सेन का अर्न को नहीं खाने वाला हूं। लक्ष्मण सेन फिर बड़ा सब दुखी हुए लेकिन उन्होंने कहे कि ठीक है आपकी स्वेच्छा से मैं एक स्थान आपको दे रहा हूं वहां रहकर भजन कीजिए। इसलिए चंपाहाटी जब हम नवदीप मंडल परिक्रमा जाते हैं चंपाहाटी आता है वहां पर जयदेव रहकर कुछ दिन भजन किए थे लेकिन गौरांग महाप्रभु इनको हटाते एक दिन दर्शन दिए और कहे कि जयदेव तुम अभी चले जाओ कहां पुरी जाओ जगन्नाथपुरी जाओ जगन्नाथ तुम्हारे लिए प्रतीक्षा में है। तो गौरांग महाप्रभु के आदेश लेकर फिर वो जगन्नाथपुरी आ गए कौन जयदेव। पुरी में आकर एक वृक्ष के मेरे मूल में वृक्ष के नीचे रहते थे समुद्र स्नान करते थे और डेली जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे कोई जो कुछ वही बैठकर जगन्नाथ के भजन गाते थे वृक्ष के नीले नीचे बैठकर कोई कुछ को देता था अपने आप प्रसाद दे रहा था संत बैठे हैं जगन्नाथ इच्छा से जो मिलता था वही खाकर दिन रात भजन करते थे। एक बार एक दूसरा ब्राह्मण था उस ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी के पास में पति पत्नी आकर भी एक पुत्र की कामना की एक पुत्री की हमने संतान की कामना की कहे कि जगन्नाथ जी बहुत प्रार्थना किए व्रत रखे उपवास रखे कहे कि हे प्रभु हम निसंतान हैं एक संतान हमें दीजिए यदि हमको पुत्री प्राप्त होगा तो आपके मंदिर में ही आपके सामने देवदासी के रूप में छोड़ देंगे आपके सामने नृत्य करने में आपके सेवा में लेकिन यदि पुत्र होगा तो हम इसको आपके सेवा में एनगेज करेंगे भक्त बना के रखेंगे घर में। लेकिन वो ब्राह्मण को क्या जन्म हुआ एक पुत्री जन्म हुआ उसके नाम क्या रखे पद्मावती। पद्मावती जब शादी की उम्र में हो गई माता पिता इसको लेकर जगन्नाथ जी के पास में आ गए है कि जगन्नाथ ये शर्त हुआ था यदि पुत्री होगा तो आपको हम दे देंगे समर्पण कर देवदासी के रूप में दे देंगे आपकी सेवा करके रहेगी। जगन्नाथ जी ने कही कि देखो इस कन्या देवी गुण संपन्न है और एक दैव गुण संपन्न मेरे महान भक्त यहां पर रहता है कहां इस पुरी धाम में आ सिंह दर्जे मंदिर से निकलकर जाओ और देखो वटवृक्ष के नीचे बैठकर वो स्वर्गद्वार के मार्ग में वो भजन कर रहा है उसके नाम है क्या जयदेव तो उसी को दे दो ये उसकी पति उसकी योग्य है वही उसकी पद्मावती के पति के जो उसी को बोल दो बोले कि जगन्नाथ जी का आदेश है इसी को तुम अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। और जगन्नाथ ये जयदेव तो महावैरागी थे और वो ब्राह्मण कन्या को लेकर जब आकर के जयदेव को है कि देखो जगन्नाथ जी के आदेश है एक कन्या को तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो जब तो जयदेव बोले भूल जाओ ये संभव नहीं है सूर्य पूर्व से पश्चिम को आ सकते लेकिन मैं किसी कन्या को शादी नहीं कर सकता हूं कौन कहे ये संभव नहीं है मैं तो घर बार छोड़कर भाग कर आया घर से विराह वैराग्य लेकर आया हूं भजन करने के लिए मेरे पास में है क्या मैं कोई पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता हूं कह के जगन्नाथ जी के आदेश है हम क्या करेंगे जगन्नाथ जी के आदेश तुम्हारे तुम जानो ये प्रिय लड़के लड़की कह के देख जगन्नाथ कहे यही तुम्हारा पति है तुम जानो ये जानता है हमारा कोई समझ नहीं तो उसको लड़की लड़की बोल रहे वो जगह लड़की छोड़ के भाग गए कौन ब्राह्मण भाग गए जयदेव क्या करी वो तो वो लड़की भी समझ गया कि जगन्नाथ जी ने साक्षात कहे कि मैं ये मेरा पति है और वो वहीं बैठे रही और जयदेव कही तुम इधर कहीं बैठी हो भाग गए यहां से चले जाए यहां से तो वो कहे कि अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगी जगन्नाथ जी के आदेश है आप ही मेरे प्राणनाथ हो पतिदेव है आप चाहे मुझे मारिए और कुछ भी कीजिए आपको पूरा अधिकार है शरीर का प्रति। और बहुत अनुनय विनय की उसके साथ देखकर फिर जगन्नाथ जी ने भी उसको सपने में कहे किनको, जयदेव को, जयदेव ये जो कन्या है ये दैवी गुण संपन्ना है, ये अन्य कन्या की तरफ भोग वासना में है नहीं है, ये मेरा ही विशेष कृपा पात्र और मैं ये भक्तिमती स्त्री है, मेरी अंतरंग शक्ति का ही प्राकट्य है, इसलिए तुम इसको पत्नी रूप में स्वीकार करने से तुम्हारा कोई हानि नहीं होने वाला है और तुम दोनों पति पत्नी रहकर मेरे लिए भजन गाते रहो, है मेरे लिए भजन रचना करो, वो गाएगी नाचेगी और तुम भजन लिखते होगे, वो तुमको सहायता करेगी घर में, घर कार्य में कुकिंग करेगी, और तुम इसको यदि शादी करोगे तुम्हारा भक्ति में कोई हानि नहीं होने वाला है। और जयदेव क्या करेंगे, जगन्नाथ जी के आदेश है, साक्षात जगन्नाथ का आदेश मिला तो फिर उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए, हैं इसलिए पद्मावती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिए, कौन, जयदेव, जयदेव उसे पत्नी रूप में रखी, छोटा सा कुटिया, फिर पत्नी आ गई तो और भूखे के नीचे नहीं रहेंगे, कैसे भूखे के, अकेले रह जाते थे, बेचलर है वो तो कहीं भी सो जाएगा चाहे, पत्नी आ गया तो फिर क्या करे, फिर वो झुपड़ी बनाने के लिए कोशिश किए, थोड़ा सा ऐसे ही कुछ चाहे इधर से उधर से चांदा लेकर बना रहे थे, लेकिन घर से ही क्या धान के जो क्या कहते इसको है, धान काटने के काट मने जैसे गेहूं को काटे वो तो उसको क्या कहते हैं है? जिसमें से घर का छत बनाते हैं, छत ऊपर का छत बनाते हैं, तो उसको संग्रह करके ऐसे छत बना रहे थे, लेकिन वो छत में ऊपर से एक एक बांबू ऐसे बांस का भी पट्टी देकर उसमें रस्सी बांधना पड़ता है, और उनकी पत्नी तो मैंने व्यस्त थी कुछ कुकिंग वुकिंग कर रही थी और उसे वहां पर पट्टी बांधने के लिए कोई नहीं है, ऊपर से बढ़ा देते और नीचे बोल लेते बांध रहे इसे पकड़ा पकड़ो ना, हाँ हाँ कोई हाँ हाँ मारता था नीचे, सोचते थे कि मेरी पत्नी मार रही है बांध रही है, लेकिन वो बांधने के बाद सब बांध दिए रेडी करके आ गए, लेकिन कौन बांध रहा है कौन बांध, देखे कि पत्नी तो है नहीं घर में, वो किसी काम में कहीं गई स्नान करने गई थी बाहर में समुद्र में, कहीं घर में तो कोई नहीं था, हाँ हाँ मार के सब पट्टी बांध रहा था कौन, वो देख रहे थे कि माधव हंस रहे हैं, उनके जो विग्रह बैठे थे कौन, माधव, तो कौन बांध रहा था, माधव ने स्वयं बांध रहे थे, श्री कृष्ण बांध रहे थे जब छप्पर को है, इसलिए पद्मावती के साथ में दोनों पति पत्नी रहते थे, लेकिन और एक डेली बैठकर गाते थे भगवान की सुंदर लीलाओं को, विशेष रूप में ब्रज लीलाओं को है गाते थे, कौन, जयदेव, जयदेव गाते थे और लीलाओं को उनके पाली धरकर वो गाती थी, कौन, पद्मावती, ये जो गाते थे तो ये भी जैसे दैव्य संपन्न दैव्य गुण संपन्न थी, वो भी दैव्य गुण संपन्न थी, कौन, वो जो गाते थे वो भी इसको फॉलो कर लेती थी तुरंत, ये एक बार बोलने से वो भी इसको फॉलो कर सकती थी जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से, गाते थे और वो नृत्य भी करती थी, कौन, पद्मावती, दोनों कविता रचना करके फिर आते थे जगन्नाथ मंदिर में और जगन्नाथ जी के सामने वो नाचते थे, ये गाते थे, जगन्नाथ जी बड़े इसको लाइक करते थे, किनको, जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद को वो गाते थे, वो आस्ते आस्ते वो ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हो गया। एक दिन जयदेव गोस्वामी ने बैठकर अपना छत लिख रहे थे गीत, लिखते लिखते देखे कि साफ भावना आ गया कि अभी भगवान श्री कृष्ण ने किसी दूसरे सखी की चंद्रावली के कुंज में चले गए हैं, राधा रानी को टाइम दिए थे, टाइमिंग दिए थे कि इसी टाइम में इसी पर्टिकुलर टाइम में मैं आऊंगा आपकी कुंज में, राधा रानी के कुंज में आने के लिए बोले थे, लेकिन किसी कारण से चंद्रावली की सखी पद्मावती आकर इनको खींच के ले गई, किसकी कुंज में, चंद्रावली के पास में, और राधा रानी के बाप में पता चलता है, विशाखा आदि सखी लोग ने इंक्वायरी करके पता लगा लेते ये चले गई उसकी कुंज में, बाद में वहां से फिर वापस आते हैं भगवान कहां, राधा रानी के कुंज में, राधा रानी तो मानिनी बन जाती है, और भगवान को आने के लिए आप अंदर में प्रवेश करने के लिए आदेश नहीं है, प्रवेश नहीं कर सकते, सखियों ने कहा कि प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, तो कहे कि कैसी भी बहुत मुश्किल से उनको तो समझा समझे कि राधारानी तक आ गए, लेकिन राधारानी अपने मान को त्यागने के लिए तैयार नहीं है, कहे कि ये दासी के पास में आपका कोई काम नहीं, चले जाओ यहां से, जहां थे वहीं वापस जाओ है, तो ऐसे कहते, तो इस समय में जयदेव गोस्वामी अपने मानसपट में समाधि में देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राधारानी के चरण में गिरते हुए उनके चरण कमल को पकड़ते हुए दही तबो पाद पर लवो मुदारम राधे कहकर मान को मैंने उनके मान को भंज तोड़ने के लिए राधारानी के मान को उनके चरण को पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। इसको देख के इसको जो ये दृश्य उनका आया भले नहीं ये कैसे मैं लिख सकता हूं, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ है, अशेष कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, एक साधारण स्त्री के पास में ही लेकर इनके चरण में कैसे गिरा सकता हूं भगवान को, उनके हाथ और आगे नहीं चला इनके, तो उठकर गए चले गए स्नान के लिए, स्नान के लिए बोले कि जाता हूं समुद्र स्नान करके आता हूं, ये लिखना संभव नहीं है ये पद मेरे से। स्नान करने के लिए गए तो वो निकाल गए, और कौन आ गया घर में कुटिया में, स्वयं जगन्नाथ आ गए जयदेव की बेस लेकर पहुंच गए अंदर, और वो आकर बस आ कहे कि पदमा लावना में जो लिख रहा था वो पुत्र जो लिख रहा था उसको लेके आओ, उनके ठीक जयदेव के टोन में भी एकदम चेहरा एग्जैक्ट जयदेव का, लेके आओ थोड़ा मैं उसको कुछ ले थोड़ा सा बाकी रह गया, तो लेके आए तो भगवान ने फिर इसको कंप्लीट कर दिए हैं, देही तब पाद पल्लव मुदारम लाइन को कंप्लीट कर दिए हे राधे, और फिर पुत्री रख दिए, बोले ठीक है कुकिंग हो गया ना लाओ कुछ बनाया तो जो कुछ बनाए लाओ। अरे भगवान ने जो है बोलो कुकिंग करते, बोले इतना जल्दी आज, बोले ठीक है, और सो भगवान बैठकर उसको कुकिंग करते उसको खा लिए, आप प्रसाद खाए, अरे सोचे कि मेरे पति तो खा लिया अभी मैं खा सकता, मैं प्रत्येक दिन पद्मावती अपने पति को खिलाकर जयदेव को खिलाकर बाप में खाती है, ये आज समय हमारा आज संस्कृति में रीति है, जो जो सधवा सती स्त्रियां होते हैं वो अपने पहले पति को ही खिलाकर बाप में खाते हैं। पद्मावती पहले देखे कि भगवान मेरे पति तो खा लिए, तो अपने पति सोच रही थी कि जयदेव है, बाद में वो खा रही थी भोजन कर रही थी, और ये भगवान भोजन करके ही उनके कमरे में सोने का जैसे वो चले गए वो साइड को, अब पद्मावती बाप ने जो उनकी वही प्लेट में जो कुछ झुटन था उसी के ऊपर प्रसाद खा रहे थे, तो वहां से असली जयदेव समुद्र में स्नान करके निकाल कर आए, हैं कहीं कि ये दिख रही है पद्मावती खा रही है, अरे क्या हो गया, वो आश्चर्य की आज को मेरे को बिना खिलाई ये कैसे खा रही है, देखिए तुमको पागल है पागली हो गई ना क्या तुम कैसे खा रही हो, तो बोले आपने तो भोजन करके गया ना अभी अभी तो आए थे, बोले मैं आया था, मैं कब आया, बोले आपने आए मुझे और आप पोथी मांगे आप जो लिख रहे थे फिर वापस चले, फिर वापस आकर कोई कि लाओ मैं उसके लिए पूर्ण कर देता हूं, और आपने मांगा पोथी मैं दिया, आपने इसको लिखा देखिए जयदेव के लिए लाओ ला देखिए देखे तो सत को सत वो लाइन जो लिखना नहीं चाहते थे वो लिखकर लिखा संपूर्ण हो चुका है, है? कि मान भगवान मने वो दही तब पाद पल्लव मुदारम हे राधे आपके चरण कमल को मेरे सिर में है मम शिरसि मंडनम है मेरे सिर पर धारण कीजिए, पदर दही तब पाद पल्लव मुदारम, वो जयदेव देखकर समझ गए कि ये पद को स्वयं कौन लिखा, हाँ ये जो बोल रहे कि मैं आके लिखा है मैं नहीं लिखा, वो जगन्नाथ ने स्वयं आकर मेरे रूप धारण करके ये कार्य करके चले गए जिसको मैं नहीं लिखना चाहता था, हैं? उन्होंने बड़े भाव व्योर होकर जयदेव कहे कि धन्य है पद्मा, पद्मावती तुम धन्य हो, धन्य धन्य तुम कितनी भाग्यवती हो, तुमने भगवान जगन्नाथ जी को साक्षात दर्शन किया और तुमने इनको खिलाया और तुम्हारे हाथ से भोजन किए तुम्हारे सेवा स्वीकार किए, तुम कितनी भाग्यवती है, मैंने ये जीवन मेरा बेकार है क्योंकि मैं जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं कर पाया, कृष्ण को साक्षात दर्शन नहीं कर पाया, भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया, इसलिए उस गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ जी को बड़े प्रिय है, तो दोनों फिर वही गीत गोविंद जाते प्रत्येक दिन मंदिर में गाते हैं और जयदेव गाते हैं पद्मावती नृत्य करती है। एक दिन जयदेव गोस्वामी के मन में भावना आया कि ये गीत गोविंद की जो पद है उस समय तो कोई किताब लिखने का ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, सो भोजपत्र में नहीं था तालपत्र में लिखते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक गीत गोविंद का श्लोक को ये जो बाप जिसको भगवान ने लेकर गए चैप्टर ऐसे पूरा मैं कपड़े में क्लोथ में जैसे हम हरिदा हरिनाम चादर लिखते हैं तो वैसे ही उसका पर गीत गोविंद को लेकर इस चादर को उसी को जगन्नाथ जी को अर्पण करूंगा। इसलिए वो ऐसे सोच के अपने गांव में चले गए, देखिए पुरी में कोई इस समय टेलर नहीं था इसको ऐसे बनाने के लिए, कहीं मैं बैठी गाऊंगा और टेलर इसको टाइप करेगा गांव में इसके वो वस्त्र के ऊपर लिखेगा, तो इसलिए गांव में केंद्र बिल्लो गांव में गए और एक टेलर भी राजी हो गया, एक टेलर राजी हो गया बैठ के लिखने के लिए और दूसरा टेलर पुली में कोई राजी नहीं हुआ इसलिए गए गांव में और बैठकर गाते थे जयदेव गोस्वामी बैठकर गीत गोविंद गाते थे,
धीर समीरे जमुना तीरे बसती बनी बनमाली, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बनी बनमाली, गोपी पीना पयधर मर्दन चंचल जुग करसली, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बनी बनमाली।
बहुत सुंदर गाते रहते थे। और वो लिख रहा था कौन, वो जो व्यवहार था जो तंत्र, वो बैठकर इसको पद को लिख रहा था। लेकिन इसे लिखते वो गाते गाते वो प्रसंग आ गया कि राधा रानी की भक्ति कितनी महान है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं इसका कोई उपमा नहीं है, तुलना नहीं है किसकी भक्ति के साथ, राधा रानी की। कृष्ण कहते कि वो पद वो भूल गए मैं लाना, कल सारी एक पद लगते जो है, हे कंसारी कृष्ण, कंसारी कृष्ण की प्रति राधा रानी की जो भक्ति है उस भक्ति का कोई द्वितीय उपमा नहीं है। राधा रानी ही भगवान की सर्वोत्तमा प्रेयसी है। राधा रानी की भक्ति की ऋण को चुकाने के लिए भगवान के पास में कुछ भी नहीं है। ऐसा ही वो पद की जो भावार्थ को लिखते हुए जो लिख रहे थे पद, उस पद याद आ रहा था। और उसी समय ये पद को गाते हुए जयदेव ने मूर्छित होकर गिर पड़े। तो जो लिखने वाला था वो लिख रहा था, बोला ये तो मुझसे क्या लिखो, बैठकर फिर वो स्टॉप करके अपने बैठा। तो उसी समय व्यक्ति ने, बुढ़े आदमी ने, वो एक गांव में जैसे भिखारी लोग का टंग टंग बजाते ना क्या, एक बिना जैसे वो ऐसे ही बजाते बजाते वो पद गाते गाते पधार गया उधर। बोला लिखो लिखो लिखो, गा रहा हूं। बोले वो जो जैसे जयदेव गाए थे वो भी ऐसे ही गा रहा था, ठीक सेम एग्जैक्ट पद गा रहा था। बोले तुमको कैसे पता चला ये? अरे मेरे को कौन सा चीज पता नहीं, दुनिया का सब कुछ मैं जानता हूं। बोला अच्छा तुम हो कौन? ना मैं इसकी बड़ा भाई हूं, ये जो मुझे जयदेव का बड़ा भाई हूं मैं ना, मेरा नाम कृष्णदेव, ये जयदेव है, मैं हूं कृष्णदेव, सब कुछ पता है, लिखो लिखो। वो वही पद को फिर गाते रहा और कंप्लीट किया। वो फिर टाइप वो अपने कंप्लीट, बोला उसको मत जगा, उसको जगा रहा था जयदेव, नहीं नहीं अरे उसको विश्राम करने दो, मैं गा रहा हूं तुम लिखो। लिख दिया पद को, बस वो टाइप कर रख दिया। अब जयदेव थोड़ा समय में उठ गए, जग गए, तो देखे जयदेव जग गए तो वो तुरंत ही वही जो बजा रहा था उसको अंतर ध्यान हो गए। हाँ जयदेव बोले अरे कचेरी कौन था ये, आपका बड़ा भाई आया था, बोल रहा था कि आपका बड़ा भाई कृष्णदेव है। और बोले कि जयदेव देखे कि गए वो पद मैंने वस्त्र में, वो पद से टाइप हो गया आगे आगे, जो वो गाना चाहते थे वो पहले से टाइप हो गया। बोला ये कैसा क्या, ना आपका बड़ा भाई कर गा रहे थे मैं देख रहा था। तो जयदेव कहे कि गीत गोविंद को तो संसार में दो ही व्यक्ति जानते, मैं जानता हूं और मेरा पत्नी पद्मावती जानती है, मेरा तो कोई बड़ा भाई ऐसा नहीं है जय कृष्णदेव। तो समझ गए कि स्वयं कृष्ण ही आकर, जगन्नाथ ही आकर लिखकर ये गाकर चले गए इधर है। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में उस विशेष पद को लिखकर भगवान जगन्नाथ जी जो शयन करते हैं उनके पास में वो दे जाता है जगन्नाथ जी के साथ। कुछ यदि साधारणतः रीति है कि पूरा गीत गोविंद को लिखकर वस्त्र में जगन्नाथ जी को देते हो, जगन्नाथ जी इसको घोड़कर सोते हैं। वो गीत गोविंद को सोने से उनको बड़ा अच्छा लगता है, किनको, जगन्नाथ जी को। इसलिए उनको गीत गोविंद के भगवान कहते, गीत गोविंद के खंडुआ कहते। आज भी रीति है गीत गोविंद जैसे जो भी उस खंड, फिर वो जो वस्त्र में लेकर जयदेव इसको संपूर्ण कर दिए, संपूर्ण करके फिर उसको लेके आए पूरी और सोचे जगन्नाथ जी को दूंगा, ऑफरिंग करूंगा इसको वस्त्र, ये वस्त्र को दूंगा। लेकिन उनको साहस नहीं हो रहा था मैं इसको दूंगा और लोग मना कर देगा तो क्या होगा, ऐसे ही मैं तो मैंने कैसा होगा, राजा की का राजा और पंडित लोग के काम है। लेकिन हठात जगन्नाथ जी ने स्वप्न आदेश दिए राजा को, क्योंकि देखो वो भी अनवसर चलता था रथ यात्रा के पहले, स्नान यात्रा की बात में जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते 15 दिन। 15 दिन पंचवा दिन गया, जगन्नाथ जी ने स्वप्न आदेश दिए कि राजा को कहे कि देखो मेरा महान भक्त जयदेव ने मेरे लिए एक क्या लिखा है, एक खंडुआ एक वस्त्र प्रस्तुत किया है, उसमें मेरे दिव्य लीलाओं को लिखकर रखा लिखा है, मुझे बड़ा प्रिय है, तुमने ससम्मान इसको लेके आओ मंदिर में, किसको, जयदेव को, उसके गांव में है और कंदमूल्य गांव में है, उसके लेकर आओ वस्त्र को साथ में, उसको लेके आओ और वस्त्र को मुझे अर्पण करो, वो वस्त्र मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है। तो राजा ने इसलिए बड़े प्रसन्न होकर फिर भेजे प्रशासन के साथ, राजा स्वयं गए, हेड पुजारी गए, सब उनके गांव तक गए और फिर वो वस्त्र को लेके आए, इसको सारे कथा कहे। वो तो भाव में बिहोड़ हो गए कि जगन्नाथ जी ने मेरे ऑफरिंग को स्वीकार किया कौन जयदेव, मैंने इतना परिश्रम करके इसको लिखा था तो वस्त्र के ऊपर, आज जगन्नाथ इसको स्वीकार किए, इसलिए वो रीति आज भी चलता है। जगन्नाथ जी को ऐसे ही गीत गोविंद के पूरे वस्त्र में लिख कर इनको शरीर को ऐसे ही उसको घोड़ कर रहते, जगन्नाथ जी को बड़े अच्छा लगता है। गीत गोविंद जगन्नाथ जी को इतनी प्रिय है, सुबह सुनते हैं गीत गोविंद, जगते हैं और फिर शयन करने के समय जो वो जो सोने का टाइम है वो गीत गोविंद कोई गाएगा। पहले का रीति था कि देवदासी नाचे गाए कि नृत्य करके गाएंगे, जैसे जयदेव गाते थे पद्मावति नाचती थी। एक बार एक राजा पुरी जगन्नाथपुरी में एक राजा आए और राजा कहे कि नहीं ये क्या है कि चलता है, एक भिखारी लिखा है इसको, इसको पढ़ रहे हो, मैं पंडित हूं अपने पंडित सभा के, वो फेक्ट एकाई रहेगा लेकिन हम लोग एक अभिनव गीत गोविंद लिखेंगे, नया गीत गोविंद लिखेंगे। राजा ने दूसरा गीत गोविंद लिखा, स्वयं भी कवि था, लिखा कहा कि वो पहला का जयदेव का गीत गोविंद बंद करो इसको गाना, मेरा गीत गोविंद जगन्नाथ जी के पास में गाया जाएगा। हैं जो इस प्रकार कहे तो पहले का गीत गोविंद बंद कर दिया गया जमुना मंदिर में गाने के लिए, और जो पुराने ओरिजिनल गीत गोविंद राजा जो लिखा था उसी को गाने के लिए गाने, तो जो है तो जगन्नाथ जी ने बड़े दुखी हो गए, इनको तो जगन्नाथ और मिला नहीं वो ओरिजिनल गीत गोविंद जयदेव का सुनना, दुखी हो गए। लेकिन एक दिन रात में देख रहे थे कि जगन्नाथ वो पास में एक बगीचा में थोड़ा देर पे बेगुन की खेती पर एक लड़की ने गा रही थी गीत गोविंद, बेगुन तोड़ रही थी, सुबह बेगुन तोड़ रही थी और गीत गोविंद गा रही थी बड़े सुंदर कंठ में। तो अभी जगन्नाथ संभल नहीं पे, वहां पर चले वो लड़की का पीछे गीत गोविंद सुनते सुनते हैं। मैं पहले भी कहता था देश को गीत गोविंद सुनते सुनते गए तो से उनका उत्तरी जो था कांध के वो कहीं गिर गया जगन्नाथ जी को, उसका भी शोध बोध नहीं था, वो तो गीत गोविंद सुनने में लोभ में पूरा व्यस्त थे। और बेगुन की खेती में चलने के कारण सारे सूखा बेगुन का एक पत्ता कट्टा सब उनके पूरा वस्त्र में शरीर में सब जगह लग गया। दूसरे दिन जो पहाड़ खोलते थे सूर्य पुजारी लोग देखे कि जगन्नाथ जी बैठे हैं, पूरे शरीर में क्या है सूखे बेगुन के पत्ता कट्टा सारे जगह सिर में सब जगह वस्त्र में पूरे, और उनकी उत्तरी भी है नहीं। सब डर गए, बोले क्या हुआ कुछ तो अनिति हुआ, कुछ अपराध हुआ है, सब धारणा देकर पड़े जगन्नाथ जी के पास। जगन्नाथ जी ने फिर स्वप्न में कहे कि राजा को और पुजारी को देखो, बोले कि वो जयदेव का गीत गोविंद को पढ़ना तुम बंद कर दिया मंदिर में, वो तो मुझे मतलब प्राण से भी अधिक प्रिय है, इसलिए वो देख रहे थे कि वो तो मंदिर से तुम लोग गीत गोविंद गाना बंद कर दिया, तो वो गा रही थी वो बालिका उधर पद्मा ने गा रही थी, मैं वहां चले गई, वो बालिका का नाम भी पद्मा थी पद्मावती, वो गा रही थी और गीत गोविंद के लोभ में सुनने का लोभ में मैं उसके पास चले गई, गीत गोविंद सुन रही थी, मुझे तो शोध बोध नहीं था। उसका पीछे पीछे जाते जाते इसे सूखा पत्ता बेगुन के खेती का जो सूखा पत्ता कट्टा सो मेरे शरीर में लगा हुआ है, जाके देखो मेरा उत्तरी वही पड़ा होगा। है तो पुजारी लोग राजा सब जाए सत्कुशत जाकर वो खेती में देखे कि जगन्नाथ जी के उत्तरी वही बैगन का खेती में पड़ा हुआ, बैगन के खेती में। और राजा ने फिर उस घर फैमिली में गए, उस पद्मा को बालिका को उसको पकड़ के बोले कि देखो उनके परिवार को माता पिता को समझाए कि जगन्नाथ जी इस बालिका के प्रति इतनी प्रसन्न है, इसको हम ले चलते हैं मंदिर में, कहे कि तुम चलो सारा परिवार फैमिली मंदिर में रहो, तुम्हारा खाना पीना रहना सब सारा जिंदगी के लिए कुछ चिंता नहीं करना पड़ेगा। और ये डेली गीत गोविंद गाएगी जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते हुए, जगन्नाथ प्रसन्न रहेंगे। हैं फिर वो आ गए मंदिर में, इसको ले आया मंदिर में, वो गाती थी और नहीं वो गीत गोविंद गाए के नाचते थे, जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न होते थे। इसलिए आज भी हो रही है डेली सुबह तक गीत गोविंद दस अवतार सूत्र गाते पहले, फिर इसकी सोने के टाइम जगन्नाथ जी फिर गीत गोविंद को पाठ गायन करने से उसको सुनते हुए जगन्नाथ शयन करते हैं मंदिर में, शिव मंदिर में पुरी में। जयदेव गोस्वामी ऐसे ही महान जगन्नाथ जी जिनकी गीत गोविंद आज भी हजार मैंने हजार हजार साल के बाद भी आज भी भक्त इसको आस्वादन करते, क्योंकि इसको भगवान ने स्वीकार कर लिया है, जिसको भगवान कहते थे कि ये मेरा है तो फिर सारा जगत ही कहता था कि ये मेरा है। एक पक्षी है मयूर, उसका नाम ही मयूर है और भगवान का प्रिय है, उसका पंख भगवान सिर में धारण करते हैं, सभी लोग मयूर को प्रेम करते हैं। आज भी हमारा इंडिया की जो जातीय पक्षी कौन है, मयूर है। तो भी इसी प्रकार जयदेव गोस्वामी की चरित्र बहुत सुंदर वर्णन है, आगे कई कहानियां हैं। जयदेव गोस्वामी एक बार कुछ तीर्थ कुछ कई जगह पर उनको भक्त कोई इन्विटेशन था, वहां पर लोग गीत गोविंद सुनने के लिए उनको निमंत्रण दिया, गए वो गाने के लिए उधर, राजा वहां सुने, लेकिन वहां पर बहुत धन उनको दिया, वो लोग जो सेठ थे उनको बहुत धन दिए, लेकिन इनके पास में इतने धन देखकर वो चार सेठ चार नहीं चोर उनके पीछे पड़ गए, इनके पीछे जयदेव के पीछे पड़ गए कि इतना धन है लेके जा रहे हैं और उसको लूटने के लिए पीछे उनके साथ में। तो वैसे ही बोले कि हम भी जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, हम जहां जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं, आप पूरी जा रहे हो ना, हम भी जाएंगे, ऐसे कहकर बंगल से चले चल दिए। लेकिन जयदेव से पता लगा लेके ये लोग दुष्ट प्रकृति के, ये लोग ने मेरे पास धन देकर इसके लोभ में मेरे से लूटना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने रास्ता कह के देखो ये धन फल मेरे को कोई आवश्यक, ये लोग से आप लोग ले लो इसको, इसको ले लो, इसको मेरा आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथ में चलेंगे। उनको दे दिए सारा धन, लेकिन वो जो दुष्ट होते हैं है? जो खड़ व्यक्ति होते हैं वो खड़े ही दुष्टता है, मतलब इनकी खड़ प्रकृति जाता नहीं है, है? नीति शास्त्र कहता कि सांप भी खड़ होता है, है? सांप भी क्रूर होता है, सर्प क्रूरम खड़ा क्रूरम, ये दोनों में यदि तुलना की जाते कौन ज्यादा अधिक है, सामने कौन ज्यादा क्रूर होता है, खड़ व्यक्ति सर्प से भी अधिक क्रूर निकालता है, है? सर्प ने सर्प से भी अधिक क्रूर निकालता है। ये जो थे ये लोग तो समझे नहीं, बोले कि यार ये धन तो दे दिया लेकिन बाप में जाकर फिर कंप्लेन कर देगा इसको, तो बड़ा सब लोग जानते हैं, कह देगा कि चार चोर मेरे से हमको तभी पहुंचाते, बोल देगा लूट लिए। बोले चलो धन तो ले दिया इसलिए इसको जान से न मारते हैं, लेकिन हाथ पैर काट के इसको कुआं में डाल देते। एक कुआं सूखा कुआं था, इसलिए जयदेव के हाथ पैर काटे, अड़े इतने नुसंस थे, धन तो सब ले लिए और हाथ पैर काट के इनको क्या किए, कुआं के अंदर डाल दिए। वो कुआं के अंदर में बैठकर गीत गोविंद गा रहे थे। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन वहां जा रहे थे, घूमते घूमते देखे कि कुछ बहुत दूर आवाज कहीं आ रहा, देखे कि कुआं के अंदर ये व्यक्ति उनको उठाए, बहुत मुश्किल उनको ऊपर आए लाए और उनके मुख से इतनी सुंदर गायन सुनकर उनको बड़ा श्रद्धा हुआ। वो पहचाने नहीं थे कि वो यही जयदेव कवि है जिनको उन्हें पहले भी चाहते थे कि राजकवि बनाने के लिए वो मना कर दिए थे। उनको लेकर अपने राजनगर में रखे और इन राज पंडित के रूप में रखे और वो रहे थे और उन्होंने कहते कि उनकी इच्छा से ही राजा वो जिसको दान दक्षिणा देना चाहते थे बोलते थे तो देते थे। राजा की बहुत ख्याति होने लगा। जयदेव गोस्वामी ने कहते थे कि आज डेली दान करो, राजा को कहते राजा डेली प्रत्येक दिन हजारों लोगों को दान करता था धन संपत्ति। ये चारों चोर एक दिन वो दान लेने के बेस में लोभ में स्वयं को भंड ब्राह्मण के ब्राह्मण को दान करते, मैंने ब्राह्मण वेश बना के धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के कंठी बांध के चले गए राजा के पास। राजा के सामने तो बैठे हुए थे जयदेव पास में और लेकिन वो तो पहचान गए यही तो है, इनको हाथ पैर काट के हम लोग फेंके थे, अभी ये तो बैठा है राजा के सामने, क्या होगा अभी, हमको तो फांसी में चढ़ा देगा अभी, ये बोलेगा तो ये मेरे को आप बंदे अभी। लेकिन बड़े सामने आ रहे थे और जयदेव इनको बोला है ठीक है आओ आ रहे थे। लेकिन जयदेव ने राजा को कह के देखो ये चारों जो व्यक्ति हैं इनको थोड़ा ज्यादा दान दो, जितने आप सबको दे रहे हैं इसकी 100 गुणा अधिक इनको देना, इतनी सोना इतनी हीरा इतनी रूप चांदी सब दे दो इनको। तो दे दिए, वो तो डर रहे थे, वो लोग तो भय की कंप रहे थे कुछ होगा क्या करेगा पता नहीं, ये कैसे निकल के आया कुआं के अंदर से और भय में। लेकिन रास्ते में जा रहे थे और कहे कि देखो ये लड़का धन कोई रास्ते में लूट लेगा, इनके पास में इनके साथ में दो देह रखी भी भेज दो, इनके लेकर जंगल पार करा के आएंगे उनके गांव तक पर छोड़ के आएंगे। रास्ते में जा रहे थे तो जो सैनिक थे वो तो पूछे कि अरे हमारे जो पंडित जी हैं आपके प्रति इतनी क्यों प्रेम करते हैं, कितना प्रेम किया आपको, क्यों इतना तक लेके आए। तो ना कहे कि अरे जानते नहीं ये जो तुम्हारा पंडित बैठकर बैठा रहा इधर ये पहले हमारे साथ में था, ये हम साथ में रहते थे और ये बहुत बदमाश था, ये सब जो ऐसे ही मैंने उसे बुरा काम करता, चोरी डकैती चोरी करने के कारण एक जगह पकड़ा गया था इसका हाथ पैर, हमको राजा ने बोला था कि कई बार चोरी कर पकड़ा गया था, वो राजा ने इसको हमको बोला था कि इसको जान से मार डालना, हम लोग जान से नहीं मारे, इसका हाथ पैर काट के ऐसे कुआ के मैंने जंगल में छोड़ दिए थे, इसलिए वो कहा कि हमको ज्यादा इसको ज्यादा दे दो। वो पहचान गया ना पहले का हम मित्र, इतना कहते ही लेकिन धर्म इसको सहन नहीं किया, इतनी झूठ कहे तुरंत ही धरती वहीं फट गई और चारों को चारों वो डकै जो चोर थे डकै वहीं इसके अंदर धस गए और पृथ्वी बंद हो गई है। माता पृथ्वी ने सब कुछ सहन करते लेकिन झूठा व्यक्ति झूठ कहने वाला व्यक्ति का पाप को सहन नहीं करती। बलि महाराज ने कहते हैं बलि महाराज ने जब बामन देव को दान देने के लिए सत्य संकल्प कर लेते हैं, शुक्राचार्य मना करता है दान मत देना इसको, यह विष्णु है देवता के पक्षे लेकर आया सब ले लेगा। तो उन्होंने तो बलि महाराज कहते कि हे गुरुदेव सब कुछ में कर सकता हूं, ब्राह्मण के पास मैं झूठ नहीं रह सकता हूं। माता धरती ने सब कुछ सह लेती है, लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति का पाप की बोझा को नहीं सहन कर सकती है, है? तो इसलिए वो धस गए, पृथ्वी फट गए, उसके अंदर समाप्त हो गए। और बेचारे सैनिक लोग ने देख रहे थे, वापस आके सारे घटना कहे। तभी राजा ने पूछा जयदेव क्या हुआ। जयदेव ने ये बात को सुनकर वो बहुत जोर से रोने लगे, मैं इनका जीवन रक्षा नहीं कर पाया, इस चारों मेरे मित्र होने। फिर वो सारे घटना को तब कहे, वो लोग जाने के बाद कि ये लोग ने कैसा किया था, मेरा हाथ पैर को काटी कैसे डाला था, बोलता है पता है, और आपने परिचय दे कि वो मैं जयदेव गोस्वामी हूं। इतना ही वो कहते ही उनके हाथ जैसे कटा हुआ था, अपने आप हाथ पैर सब फिर जय जगन्नाथ कहते ही, जय जगन्नाथ, आंख बड़े स्वादिष्ट होकर आंख बंद कर जय जगन्नाथ कहते ही उनके हाथ पैर सो फिर बाहर निकल आए। राजा ने बड़े प्रसन्न होगी कि वही जयदेव है जिसको मैं पहले भी राजपंडित बनाता था, अभी जगन्नाथ जी ने मेरे पास ही भेज दिए। ऐसे ही महान कवि जयदेव की महिमा बहुत सुंदर उनके वर्णन है। ये जगन्नाथ जी के महान भक्त थे, कौन? जयदेव गोस्वामी। उसी प्रकार उनकी पत्नी भी थी, उनके पत्नी तो प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए, उनको भी खबर मिल गया है जब उनके पति उधर, इसलिए पत्नी भी आ गई उधर। और फिर उन्होंने कुछ दिन तक राजा की दरबार में रहे उनकी सेवा करने में, लेकिन अंत में फिर वो जगन्नाथपुरी में आकर जगन्नाथ जी के सामने चरण में रहकर सारा जिंदगी भजन करते हुए, गीत गोविंद गाते हुए समय बिताए थे। ऐसे जगन्नाथ जी के महान भक्त में से इनकी गिनती होती है जयदेव गोस्वामी। जगन्नाथ जी पतित पावन है, जितने भी पतितों को उद्धार करते हैं। दीनहीन जपशील हरि नामे उद्धारिल, तारो सखी जगाई माधाए, जैसे गौरंग महाप्रभु जगाए माधाए को गौर निताई ने उद्धार किए थे, जगन्नाथ जी ने भी ऐसे कई पापी तापी को उद्धार किए हैं। यहां तक कि उन्होंने ये सबसे बड़ा नृशंस मुस्लिम नवाब जो था, कौन? औरंगजेब, उसको भी कृपा किए हैं, इतिहास से प्रमाण मिलता है। औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के लिए कई बार प्रयास किया था, कई मंदिर को तो तोड़ा। हमारा वृंदावन में रूप गोस्वामी के गोविंद देव की मंदिर को, जन्मस्थान में कृष्ण जन्मस्थान में 250 फुट की उच्च मंदिर था, उसको भी तोड़कर वहां पर समाधि, मैंने वहां पर मस्जिद बनाया। गोविंद देव के मंदिर 7 मंजिल के था, उसको तोड़ दिया, 2 मंजिल केवल बचा है। तो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया था, कई बार भेजा लोगों को। उसके एक जहांगीर कुल्ली खा एक सेनापति को भेजा था, उन्होंने जाकर तो जगन्नाथ के 2 गेट को तोड़ दिया था, फ्रंट गेट और 2 गेट को तोड़ के फिर जगन्नाथ जी के जो डायमंड होता है वो जगन्नाथ जी के लिए उपयोग किया था, उसको लेकर उठा के कुछ गहना लेकर भाग के आ गया था। लेकिन पूरे मंदिर तो नुकसान नहीं कर पाए, लेकिन कई बार प्रयास किया था। यहां तक कि अकबर ने निश्री औरंगजेब ने कहा कि रथ यात्रा बंद कर दिया था, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा मनाने नहीं देता था। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बंद कर दिया था कई साल से, लगभग 12 साल, 1691 से लेकर 1703 तक जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव बंद कर दिया था औरंगजेब। औरंगजेब बंद कर दिया था कहां? जगन्नाथपुरी में, वहां रथ यात्रा उत्सव नहीं हो रहा था। तो भी श्लोक सोचे किससे होगा, लेकिन बड़े दुखी, इतना ही नहीं फिर भी वो सब जगह जगह पर जितने भी पुरी में आने के मार्ग है सभी मार्ग में सब सैनिकों को रख देता था, कोई भी तीर्थयात्री जैसे पुरी में न पहुंचे, पुरी में प्रवेश न कर सके। पुरी तो पूरा श्मशान एक मरुभूमि की तरह हो गया, ब्राह्मण पंडे लोग सब भूखे रह गए कि कोई दान दक्षिणा कुछ नहीं आता, कोई दर्शन करने नहीं आते, तो कहां से लाएगा पैसा। जगन्नाथ जी के सारे सेवा पूजा बंद कर दिए, पुजारी लोग छुप के रात के 12 बजे कोई छुट्टा छिद्र गेट दक्षिण गेट के सामने था उसमें जो छुप के आते थे जगन्नाथ जी की पूजा करके फिर चले जाते थे। और स्नान पूजा के स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी के स्नान वही सिंहासन के ऊपर बैठा कर करते थे। एक्चुअली वो आए थे, सेनापति कहते थे कि मुझे जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का डेटी दे दो तभी मैं छोड़ूंगा, तो इसलिए राजा ने उस समय जो राजा थे तो उन्होंने किया कि नकली जगन्नाथ बलराम को डेटी बनाकर नकली दे दी, असली डेटी को ओरिजिनल डेटी को उन्होंने छुपा दिए थे पीछे, जो मंदिर विमला देवी की मंदिर उनके सामने पीछे छुपा के रखे थे। तो ओरिजिनल डेटी तो उन्होंने दिए, नकली डेटी दिए थे औरंगजेब, नकली डेटी को लेकर कहां डाला? मस्जिद के सामने पाउच में सब जो स्टेप्स थे वहां डाल दिया कि हिंदू मुस्लिम सब जो जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए हिंदू का भगवान है, इसको किक मारकर जाएंगे, सब किक मारकर मुस्लिम लोग जाएंगे, लेकिन वो ओरिजिनल डेटी थे ही नहीं। तो थे भी वैसे इतने नृशंस था वो, सालग्राम श्रीराम को सब उठा उठा के लेकर मस्जिद के जो पाउच होते थे उसके नीचे डाल देता था, सालग्राम श्रीराम को रख के बस उसके ऊपर लोग चल के जाते थे मुस्लिम लोग। तो ऐसा ही बड़ा अनुशंस था। रथ यात्रा उत्सव बंद हो गया, सारे जो मैंने उत्कलवासी सारा दुनिया के लोग सब दुखी हो गए भारत के विभिन्न प्रांत से। और एक व्यक्ति था भगवान नृसिंहदेव की महान भक्त था, पुरी में दीननाथ के रूप में उसकी बड़ा प्रसिद्ध था भक्त समाज में है? दीननाथ दीनबंधु दीननाथ है? मेरा डोरी ने तेरा मेरा डोरी तेरे हाथ कहते ना, हमारा वृंदावन दीनबंधु प्रभु कहते हैं। शशि गौर नेता की जय, राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की जय, शशि सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो इस प्रकार वो व्यक्ति ने साहस करके आया एक पत्र लेकर कि औरंगजेब के पास में कि रथ यात्रा उत्सव को फिर मनाने के लिए परमिशन देने के लिए। कोई साहस नहीं करता था कि उसके पास में जाएगा तो सिर में सीधे गर्दन काट के फेंक देगा। वो तो सिख लोगों के गुरु तेग बहादुर को भी सूली में चढ़ा दिया था, कौन? औरंगजेब। लेकिन ये दीननाथ ने बड़े पंडित दीननाथ बड़े प्रसंग मैंने उसके पूरे नाम था दीनदयाल शर्मा ऐसे कुछ था, लेकिन वो पूरा दीननाथ के रूप में प्रसिद्ध था। तो उसकी पत्र को लेकर वो आया लेकिन औरंगजेब जिस दिन ब्राह्मण आ रहा था नृसिंहदेव को प्रार्थना करते करते पूरी रास्ता चलता था। बाह्य नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंह मारिंग शरणंग प्रपद्य गाते गाते पूरा आता था नृसिंह वंदना। और कहते भगवान सदैव सहाय हुई, आप सारे जगत की पालक हो, ये रथ यात्रा उत्सव फिर दोबारा जैसे शुरू हो जाए। तभी जो आ रहे थे तो औरंगजेब ने उसी रात्रि में स्वप्न देख रहा था, दूसरी रात में स्वप्न देख रहा था कि उसके मुसलमान के भगवान जिनको खुदा बा अल्लाह कहते हैं तो उन्होंने स्वयं प्रकटित होते हैं किस रूप में, जगन्नाथ के रूप में प्रकट होकर उसको कहते कि देख रहा था कि अल्लाह औरंगजेब स्वप्न में ये मेरा अल्लाह ही स्वयं प्रकट हो रहे, किस रूप में, खुदा स्वयं जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो रहे। वो विग्रह आके कह रहे कि औरंगजेब बहुत हो गया, तुमने मेरे रथ यात्रा उत्सव को रोकना नहीं, काल मेरी महान भक्त यहां पधारेगा दीननाथ, उसको तुम परमिशन दे देना, तुम्हारे सभी कल्याण सभी प्रकार के कल्याण होगा है? नहीं तो तुम्हारे सभी अमंगल ही अमंगल होगा। तभी सुबह सुबह उठ रहा था और स्वप्न को ब्रह्म मुहूर्त में देखा था, कौन? औरंगजेब। उसको सोच रहा था देख रहा सुमन, तो उसी समय यह व्यक्ति पहुंच गया दीननाथ जाकर औरंगजेब को पहुंच गया, भगवान की इच्छा से पहुंच गया डायरेक्ट। उसको देखते ही तुरंत ही समझ गया और तुरंत बिना बुझे उसके पत्र में साइन करके दे दिया रथ यात्रा, फिर परमिशन दे दिया रथ यात्रा उत्सव मनाने के लिए। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। तभी उसको आश्चर्यचकित हुए, वो भी समझ गया कि अरे जगन्नाथ जी कितना कृपा है, मुझे तो कुछ बोलना भी नहीं पड़ा प्रभु आपने आप साइन करके दे दिया, कौन? इतना ही नहीं, औरंगजेब ने एक आज जहां पर खोर्धा के स्टेशन है वो पहले मार्कंडपुर ऐसे नाम था उस अंचल का, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का कई गांव जगन्नाथ जी की सेवा के लिए दान दे दिया। लेकिन दान पत्र करके आज भी जो ओडिशा के जो ऐसा क्या कहते हैं द्वारची भी जो म्यूजियम में रखा गया कि औरंगजेब ने जो दान पत्र जो साइन करके दिया था, ये जो इतने एकड़ लैंड बाय ये जो गांव जगन्नाथ जी की सेवा में दान दिया, इतनी बड़े अनुशंसा मैंने जो था मुस्लिम शासक उसकी हृदय में परिवर्तन आया, वो दान करके दान दे दिया है, आज भी उसके प्रमाण पत्र रखा गया है। उसी की बात में ये घटना की बात में औरंगजेब की फिर हृदय परिवर्तन होने लगा। इसलिए जगन्नाथ जी ने इतनी बड़े कृपा इतनी बड़े अनुशंस व्यक्ति को भी कृपा किए, तभी तो उनके नाम पतित पावन है, है? इतनी बड़े अनुशंस व्यक्ति उसकी बात में औरंगजेब कुछ साल के बाद उसकी जब मृत्यु होता था, क्यों औरंगजेब बात में आप जानते हो, उसको चार भाई को बने दारा सुजा मुराद औरंगजेब और तीनों भाई को मर्डर करके अपने पिता को जेल में डालकर शाहजहां को जेल में डालकर फिर वो सम्राट बना था, कितने लोगों को मर्डर किया है, कितने नृसंग से कितने हिंदू मंदिर को तोड़ा था, लेकिन फिर भी ऐसे प्रकार व्यक्ति को भी जगन्नाथ कृपा किए हैं। और फिर उन्होंने मृत्यु के समय में ऐसे कहा कि जा रहा था कि मैं क्यों कहां से माने के कहां से आया था और कहां जाऊंगा, मुझे भी ये पता नहीं है, मैं कौन हूं मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन कितनी पाप कर्म ये जीवन काल में किया है उसके लिए मुझे कितनी सजा भोगना पड़ेगा है। बड़े नम्रता से अंत समय में मौन हो गया था, कौन? औरंगजेब है। इसलिए कुछ लेखक लोग कहते कि ये सब जगन्नाथ की कृपा से उसकी मन में ऐसी भावना उद्रेक हुआ था। इस प्रकार नृशंस व्यक्ति को भी जगन्नाथ जी ने उद्धार किया, जैसे कि जगाए माधाई को उद्धार किए थे कौन गौर निताय। जगन्नाथ भी इसे बड़े दयालु है, पति तपावन है। इनके लिए कहते कई दिनों से हम इनके भक्तों के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कितने भक्तों कितने व्यक्तियों को उद्धार करते करते आए, कितने लोगों की प्रार्थना को सुनते आए। कोई भी जगन्नाथ जी के पास में आता है और अपने हृदय की व्यक्त करता है, जगन्नाथ जी ने कभी किसको निराश हताश करके नहीं भेजे। जगन्नाथ जी ने दयालु है। प्रभुपाद जी को दो डेटी बड़े बिगड़े हैं। प्रभुपाद जी ने अपने भक्त के पास अपने शिष्य के पास में पत्र में लिखते कि मुझे बचपन से ही दो विग्रह बड़े प्रिय है, एक है राधा कृष्ण के विग्रह, दूसरे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है। उन्होंने अपने और एक पत्र में लिखते कि ये जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जो रथ यात्रा महोत्सव बचपन से ही मुझे बड़ा प्रिय है। इन्होंने अपने शिष्य जमुना देवी दासी को लिखते कि देखो लंदन में तो मंदिर बना पाओगे कि नहीं उसमें चिंतित मत हो, लेकिन एक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव का मना दोगे तो आपका सारे प्रयास लंदन का जो प्रचार का अभियान ये सार्थक हो जाएगा। इसलिए जगन्नाथ जी के हम जितने भी भक्तमाला को पढ़े बा जितने भी भक्तों के चरित्र चर्चा किए हैं, इनको ऐसे और भी चर्चा करते रहेंगे तो डेली चलते रहेगा, समाप्त नहीं है। हरी कथा हरी अनंता, हरी कथा अनंता, ये अनंत है, इसको समाप्त होने वाला नहीं है, है? लेकिन जानना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ जी के जितने भी भक्त हैं ये समस्त भक्त में से सर्वश्रेष्ठ भक्त है श्रील प्रभुपाद। इन्होंने सारा जगन्नाथ जी की महिमा को पूरा दुनिया में प्रचार किया, पूरा दुनिया में संसार में प्रचार किया जगन्नाथ जी की कथाओं को, जगन्नाथ जी की महिमा को, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को पूरे विदेश में, देश विदेश में। आज कोई पृथ्वी में ऐसे कोई शहर नहीं है जहां पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उत्सव नहीं मनाया जाया हो, सभी जगह पर रथ यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। पत्रं पुष्पं फलं त्वयं जमे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहूत वासनामि प्रयतात्म। भगवान कहे कि पत्ता दे दो, फूल दे दो, फल दे, जो कुछ मुझे दोगे। लेकिन जगन्नाथ जी को एक फूल सबसे प्रिय है, कौन जानता है, कौन बताएगा कौन सा फूल सबसे प्रिय है, है? कौन सा फूल जगन्नाथ जी को सबसे प्रिय है? मालती फूल, और मालती फूल उड़िया मालती फूल है, गांथिया मालती माला दिव दुहार गले। नरोत्तम दास ठाकुर कहते गांथिया मालती माला दिव दुहार गले अधरे तुलिया दिव कर्पूर तांबूले। जगन्नाथ जी की एक फूल है, उसके लिए एक उत्सव भी मनाया जाता है, एक फूल है, उसका नाम है दयना। क्या फूल? दयना माली। ये जगन्नाथ जी को बड़ा प्रिय होता है दयना फूल, उसका इतिहास है बड़े सुंदर। इसके तो स्कंद पुराण में वर्णन आता कि एक्चुअली वो दमनक नाम के एक राक्षस था, उसके उसको भगवान ने भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था, बड़े उत्पात कर रहा था देवता मने तो उसको कोई वध नहीं कर पाता था, इसलिए अंत में भगवान ने उसको वध किए थे। वो चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि के दिन भगवान उसको मारे थे, तो इसलिए। लेकिन उस दैत्य ने अंत में भगवान के चरण में समर्पण किया था, इसलिए भगवान ने उसके प्रति प्रसन्न हो गए थे और उसको वरदान दिए थे कि मैं तुम्हें हमेशा अपने हृदय में धारण करूंगा एक लता की रूप में, और उसी के नाम इसलिए वो दमनक नाम से लता का सृष्टि हुआ। लेकिन पूरी में एक कहानी अलग प्रकार की है। जैसे प्रसाद हम देखते हैं इतने जगन्नाथ के प्रसाद है, कभी कभी हम प्रसाद को ऐसे ही ले लेते किसे लेफ्ट हैंड में, ये कितनी बड़े पाप है आप ये कहानी से अभी पता लगेगा। जगन्नाथ जी की प्रत्येक दिन जो ड्रेस होता रात्रि में जगन्नाथ जी को शयन दिया जाता है, जगन्नाथ जी के सिर पर एक गभा लगाते हैं, देखें फूल का ऐसे ही लगता है, ऐसे सिर से ऐसे लगता नाक है ऐसे जगन्नाथ जी के बलराम सुभद्रा की भी। और रात्रि में सुबह जब रात्रि में शयन कराते हैं, सुबह जो जाते हैं पुजारी जगाते हैं, तभी अन्य वस्त्र सब तो जगन्नाथ जी के शरीर से निकाल देते वस्त्र लेके फिर दोबारा, लेकिन जो ये गभा यदि नीचे गिर जाता है, यदि वो बलराम का जब गभा गिरा होता है तो उसको लेकर बिमला देवी को देते हैं, पीछे बिमला देवी को अर्पण किया जाता है। यदि सुभद्रा जी का गिरा हुआ तो गरुड़ जी को दिया जाता है, लेकिन यदि वो गभा जगन्नाथ का हो तो उसकी प्राप्ति का अधिकारी राजा है, राजा जगन्नाथ जी के प्रथम भक्त माने जाते हैं गजपति राजा। तो उस समय जो गजपति राजा थे वो बड़े सटा खेलने वाले थे, दिन रात क्या खेलते थे, सटा खेलते थे, जो मैंने खेलने में व्यस्त रहते थे। यदि क्षत्रियों के लिए अनुमोदन कहा गया लेकिन वो दिन रात खेलने में रहते थे। लेकिन एक दिन देखा कि पुजारी जब गए अल्टर में देखे कि जगन्नाथ जी के गवाह गिरा हुआ है तो समझ गए कि ये किसको देना है, राजा को देना है। तो उसको उठा के वो लेके गया और राजा ने बैठकर सटा खेल रहे, तो घावर क्या करूं अभी, राजा खेलने में बड़े स्तर राइट हैंड में सटा फेंक रहे और सब बैठे खेलने के साथ उनके से खेल। तो बहुत समय खड़ा हुआ, पुजारी क्या करेगा, फिर बढ़ाए दिया तो राजा ने इसे लेफ्ट हैंड में इसको ले लिए। लेकिन लेकर जब देखे, अरे तो जगन्नाथ जी की महाप्रसाद है, जगन्नाथ जी के गवाह है, मैं तो बहुत बड़ा अपराध किया, बा हाथ में इसको लेफ्ट हैंड में ले लिया। राजा बड़े दुखी हो गए, स्तब्ध हो, खेल छोड़ दिए एक सेकंड में, कहे कि मैं अपराधी हो गया हूं, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को मैं लेफ्ट हैंड में इसको ऐसे ही है ज्ञान करके बाएं हाथ में लिया, मैं अपराधी हूं, इसका प्रायश्चित तो मुझे करना चाहिए। मैं बहुत सोचे क्या प्रायश्चित होगा, इसका क्या प्रायश्चित होगा, बोले कि जिस हाथ में लिया हूं ये हाथ को काट के फेंक देना चाहिए, जिस हाथ में ये लेफ्ट हैंड में इसको ये लेफ्ट हैंड को काट के फेंक दूंगा। लेकिन ये कार्य कैसे करेगा, जो सोचे प्रैक्टिकल करने के लिए, बोले इसको करेगा कौन, कैसे करूं, बहुत प्लान बनाया, कहे कि ठीक है इसके लिए वो अपने मंत्री को ही चुने। एक दिन वो कहानी बनाए, मंत्री को कहे कि देखो मंत्री, मैं रात्रि में जो सोता हूं मेरी कक्षा में, और फिर रात्रि में एक भूत आता है, घोष्ट भूत आकर वो झरका से अपने हाथ को ऐसे ही अंदर बढ़ाता है, अंदर में हाथ बढ़ाकर मुझे डरवाता है, मुझे बहुत परेशान करता है, रात भर सोना नहीं देता है और मैं सो नहीं पाता हूं, रात भर जब तक सुबह नहीं होता तो तब तक वो हाथ ऐसा ही दिखाई पड़ता मुझे, ऐसे ही हाथ बढ़ाकर मुझे जैसे पकड़ेगा, ऐसे ही अभिनय करता है, गर्जन कभी कभी विकट गर्जन करता है। तो मंत्री ने कहा कि यार ऐसी बात है, मुझे इस काम में छोड़ दो, मैं इसको वो भूत कुछ रेडी कर दो, मेरे पास में तंत्र मंत्र भी कुछ विधि है, मैं तांत्रिक से को सलाह लेकर मैं इसको सब ठीक कर देता हूं, काल में आपकी कक्षा में मैं सोऊंगा और आप दूसरे कक्षा में सोइए, और वो जो घोष्ट आएगा तो मैं इसको समाप्त, मैं इसको ठीक पाठ पढ़ाऊंगा। तो राजा ने चले गए दूसरे कमरे में, मंत्री तो जानता नहीं था, राजा ने प्रकृति में घूम के आया कि उसी झरका के बीच में हाथ बढ़ाकर ऐसा ही मंत्री को ऐसा ही, तो मंत्री सोचा कि उठा 12-1 बजे देखे कि हाथ क्या आ रहा है, ऐसा समझ गया आ गया है भूत, अपने तरवाल को निकाले, घोड़े तेजी से मारे एक चोट खट गया, यहां से गिरे। तब ने मंत्री ने हाथ को पकड़ गया था, एक दो हाथ को पकड़ के लिया, देखे कि हाथ को देखे कि सारे अलंकार लगा हुआ, राजा की पहचान गई हाथ किसका है। लेकिन राजा ने तो राजा बड़े प्रसन्न थे कि मेरा पाप का प्रायश्चित आज ठीक से हो गया, रो रहे थे वो साइड में। लेकिन मंत्री ने घूम के देखा, क्या राजा ने आए कहे कि मंत्री तुमने बहुत बड़े मेरे उपकार किए हो, मैंने जो पाप किया था उसका प्रायश्चित का और कोई उपाय नहीं था, जगन्नाथ जी का प्रसाद को मैं बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में ले लिया था, इसकी प्रायश्चित का यही उपाय था और कुछ इसकी प्रायश्चित का उपाय नहीं था। उन्होंने कहे कि मंत्री इस हाथ को लेकर इस फूल के बागान के बीच में गाढ़ा दे दो, हाथ को लेकर जमीन के बीच में गाढ़े दे दिए। राजा ने राजा के एक हाथ चला गया, वो कई दिनों तो करो यहां उधर जाते नहीं थे, पब्लिक के सामने इधर तो नहीं जाते थे, वो अपने कमरे में रहते थे, नहीं पुष्प बागान में वहीं घूमते थे, जगन्नाथ जी के भजन करते थे। लेकिन राजा ने मार्क किया जहां पर उसको उसे हाथ को जब जमीन का नीचे गाढ़ा दिया गया था, कई दिनों की बात के थोड़ा देर कई 2-3 महीने की बात, वहां पर से एक छोटा सा वृक्ष उग रहा है, तो उसको ध्यान से देख रहे थे राजा ने, और वह वृक्ष आस्ते आस्ते बढ़ने लगा और उसमें से ऐसे ही उसकी कलर ठीक श्याम सुंदर कृष्ण की कलर जैसा उसके पत्ते से वो होने लगे, श्याम वर्ण के से श्याम सुंदर पत्ते से होने लगे, उसमें सफेद सफेद फूल भी निकलने लगे और उस वृक्ष पूरा पत्ते भी सुगंधित थे, इतना सुगंध हो रहा था कि पूरा गार्डन को वो महकने लगा, पूरा गार्डन उस सुगंध में। थोड़ा बड़े हो गया, उसमें कई ऐसे शाखा प्रशाखा हो गए, पत्ते से उभर गए। राजा ने सोचा कि इतनी सुगंधित है ये, तो जगन्नाथ जी की अर्पण करने के लायक मैं सोच रहा मान रहा हूं ऐसे ही लग रहा है। राजा के मन में जो ऐसी भावना आ गया, दूसरे दिन सुबह राजा ने जो पुजारी लोग आके देख रहे जगन्नाथ जगाए के देखे कि जगन्नाथ जी के शरीर में कुछ नया पत्ता फूल सब लगा गया है और जगन्नाथ जी का पूरे अल्टर महक रहा है पूरे अद्भुत सुगंध में। सब पुजारी लोग आश्चर्य हो कि इतनी नया पत्ता सब कहां से आ गया, नीला नीले पत्ते सफेद फूल ये कहां से आ गए और इतने तो कोई लगाया नहीं इसको, और जगन्नाथ जी ने अपने छाती में पूरा बक्षे में इनको धारण करके रखे, भाई बहन को भी दिए, दोनों भी लगे हुए। लेकिन राजा ने सुबह सुबह बगीचे में देख रहा कि वो डेढ़ा का पुष्प जो पेड़ में एक भी पत्ता नहीं है, फूल भी नहीं है, बोला कि बड़ा दुखी हुआ, पर ये काम कौन किया। और वो देखा कि जगन्नाथ जी के पास में पुजारी लोग ने भी आकर कि पुजारी क्या देखे कि जगन्नाथ जी के शरीर में ऐसा ही कहां से सो काला काला पत्ता और फूल सो आ गया, सो जगन्नाथ जी के शरीर में पूरा लगा हुआ। राजा ने सोचा कि यही गार्डनर सब कुछ किया होगा, इसी के अलावा ये गार्डन से कौन की हिम्मत होगा इसको सो तोड़ के लेने के लिए। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि गार्डनर को आज सोली में चढ़ाने का, मेरा बिना अनुमति से एक काम किया, उसको लेकर बंदी में डाल दिए, जेल में डाल दिए। बेचारा गार्डनर कुछ जानता नहीं, जेल में बैठकर रोने लगा, जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर रहा था बड़े ध्यान से, प्रभु मैं तो आपका ही सेवक हूं, आपकी गार्डन का ही रक्षा करता था, आपको सब कुछ पता है, आप तो जगन्नाथ हो, अंतर्ज्यामी हो, भक्त वत्सल हो, भक्ताधीन, कितनी नाम आपकी मैं कहूं, आपकी गुण गायन करूं, लेकिन ऐसे ही एक निरीह व्यक्ति का सिर काल सुबह कटने वाला है, आप तो कुछ कीजिए। उसके प्रार्थना को उसके ऐसे प्रार्थना को जगन्नाथ जी ने श्रवण कर लिए, सुने जगन्नाथ जी उस कथा को, उसकी प्रार्थना को श्रवण किए। और दूसरे दिन पहले राजा के पास में, राजा वो सपने में आए, जगन्नाथ जी ने कहे कि देखो राजा, ये जो तुम्हारा माली है, गार्डनर है, वो बेचारा निरी है, उसकी कोई दोष नहीं, वो मेरा महान सेवक है, मुझे प्रिय है, उन्होंने वो पत्ता नहीं तोड़ा वृक्ष की, वो वृक्ष तो मुझे प्रिय था, क्योंकि तुम्हारी शुद्ध भक्ति के परिणति के आधार पर, तुम्हारी शुद्ध प्रेम भक्ति का ही एक उदाहरण था, आपने अपने हाथ को ही काटकर वहां पर समाधि दे दिया था, वो मणि प्रसन्न था तुम्हारे ये भक्ति की निष्ठा को देखकर, इसलिए तुम्हारी प्रेम भक्ति से ही वो वृक्ष वहां से उगा था, और इसीलिए मुझे प्रिय था, उसमें अद्भुत जो पत्ता और फूल मुझे अर्पण करने का तुम्हारी मन में तो इच्छा हुआ था, इसलिए मैंने स्वयं इसको तोड़कर, स्वयं स्वेच्छा से मैं तोड़कर लाया हूं, मैं स्वीकार किया हूं और मेरे भाई बहन को भी कुछ दे दिया, तो इसमें उसका क्या दोष है, तुमने इसको जेल से निकाल दो। तो फिर राजा ने स्वप्न देखकर सुबह जेल उसको निकाला, लेकिन जेल में निकाला, लेकिन उस दिन जो बिस्तर से उठ रहा था, राजा ने देखा कि उसके हाथ फिर अपने आप आ चुका है, और एक हाथ जो काट के वो समाधि दिया, वो हाथ अपने आप ओके आ गया फिर सामने। ये जगन्नाथ जी की भक्त वत्सलता है। तभी राजा ने, आज भी जगन्नाथ मंदिर में ये दयना उत्सव चलता है, ये तब चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन है, आज भी वो गार्डनर था, पर राजा ने कहा कि वो जो गार्डनर है वो विशेष रूप में दयना फूल के माली रहेगा, वो दयना गार्डन बनाया जाता है अलग से, ये उत्सव मनाया जाता है। उस दिन जगन्नाथ जी और बलराम का जो एक दूसरा विग्रह रखते हैं, कृष्ण बलराम कहे कि कृष्ण बलदेव, कृष्ण राम कृष्ण विग्रह, तो उनको लेके जाते हैं गार्डन में, जगन्नाथ बल्लभ गार्डन, तब से वो गार्डन का नाम हुआ जगन्नाथ बल्लभ गार्डन। तो गार्डन में लेके जाते हैं कृष्ण राम राम कृष्ण को, कृष्ण बलराम को देखिए, और रात में वहां पर बहुत उत्सव मनाया जाता, पूरा बहुत प्रसाद बनाकर उनको खिलाते हैं, किनको, कृष्ण बलराम को खिलाते, खिला के सज्जे में शयन कराते हैं, तो शयन के टाइम में वो पुजारी वो दयना का पेड़ दो तो उखाड़ के लाके वहां और कृष्ण के शरीर में एक बलराम के शरीर में बांध देता है ऐसे ही, और रात में जब जगते तो वो कहते कि ये चोरी कर लिया है, वो दयना का फूल चोरी किया है, कौन ये कृष्ण बलराम चोरी किए हैं, इसलिए चोर है, यही लोग चोरी किया है, ऐसे कहे कि फिर वो उनको मारे, बड़ा मजाक करते हैं उधर, थोड़ा मजाक कर फिर उनको लेके आते हैं, और दो छह पेड़ उनको उखड़ के लाते हैं, इनके पास में दो दो बांधा रहता है, और उसको लाके जगन्नाथ जी को भी देते कुछ, और ये दोनों को लाके फिर दूसरे दिन में गोडाउन के में डाल देते, बोले ये नटखट किए हैं, चोरी किए हैं, इनको आज दिन भर खाना नहीं दिया जाएगा, फिर रख देते, फिर शाम को फिर उनको जगाते, आरती करते, फिर और शाम को फिर बहुत बड़ा महोत्सव मना के फिर बहुत प्रसाद इनको खिलाते। तो ऐसे वे देना जगन्नाथ की कितनी मेला है, कितने उत्सव में हो, और 12 महीने में चलते रहता है कई प्रकार के उत्सव है। तो इसी प्रकार जयना जगन्नाथ अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। और अभी समय हो गया है, मैं और आप लोग को बोर नहीं करना चाहता हूं, अभी जगन्नाथ अष्टक गाएंगे, ठीक है, जगन्नाथ अष्टक सब गाएंगे। जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं जह पठे प्रजतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकं स गच्छति। जो जगन्नाथ अष्टकों को गाता है सुनता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर कहां चले जाता है, कहां जाता, जगन्नाथ की लोक विष्णु वैकुंठ लोक में चले जाता है, फिर ये जन्म मृत्यु संसार में नहीं आता। वो सीट है कि किसी पास नहीं है, इसमें निकालो जगन्नाथ अष्टकम। दोस्त देखिए,
कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करब, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करब, मुदाभिरि नारी वदन कमला स्वाद मधुप, मुदाभिरि नारी वदन कमला स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मा मरि अमर पति गणेशार्चित पद, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे, बोलो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ, भुजे सबे वेणु शिरसि सुखि पुच्छंकटि तटे, भुजे बोलो भुजे सबे वेणु शिरसि सुखि पुच्छंकटि तटे, दुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधे, दुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमत् वृंदावन बसति लीला परिचय, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे, बोलो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, महाम्बोधि स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे, महाम्बोधि स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे, वसन प्रसादान्ते सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा परा बारस जल जल दशेणी रुचिरे रमा बाणी सम स्फुरमल पंके रुह मुख सुरेन्द्र ईराराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। 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 रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलई स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपद उपाकर्म्य सदयो दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगता सिन्धु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पर ब्रह्मा पीड़ा कुबल यदोलोत्फुल्ल नयन निवासी नीलाद्रौ निहित चरण अनंत शिरसी रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंग सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वैजाचे राज्यं न च कनक माणिक्य विभवं न जाचे अहं रम्यं सकल जन काम्यं वरवधुं सदा काले काले प्रमथ पतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां द्रुततिमपरां जादवपते अहो दीननाथ निहतमचलं निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Jagannatha. Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jagannatha Swami Nayana Pathagami Nayana Pathagami Bhavatune Jagannatha Swami Nayana Pathagami जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 गीता गौर हरि
चलो जगन्नाथ अष्टक के अर्थ में पढ़ता हूं सुनिए। कभी कभी जमुना तीरस्थ श्री वृंदावन में वेणु गीत में चंचल एवं गोपी वनिताओं के मुख कमल के आनंद पूर्वक आस्वादन करने वाले भ्रमर स्वरूप तथा लक्ष्मी शिव ब्रह्मा इंद्र एवं गणेश आदि देवताओं के द्वारा जिनके चरण पूजित है वे श्री जगन्नाथ मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाएं। बाई भुजा में वेणु सिर पर मयूर पंख कटी तट में पीताम्बर एवं अपने नेत्र प्रांत में सहचरों के कटाक्ष को धारण करने वाले तथा श्री वृंदावन के निवासियों की लीलाओं जो सदैव परिचित है वे ही श्री जगन्नाथ मेरे नेत्र मार्ग में पथिक बने जाए। महासमुद्र के तीर पर सुवर्ण के समान सुंदर नीलाचल के शिखर में अपने बड़े भाई बलदेव जी के साथ अपने मंदिर में निवास करने वाले एवं सुभद्रा जिनके बीच में विराजमान है तथा जो समस्त देवताओं को अपने सेवा का अवसर देते रहते हैं वे ही श्री जगन्नाथ मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। जो करुणा वरुणालय है सजल जलद श्रेणी के समान श्याम सुंदर है एवं रमा तथा सरस्वती के साथ विहार करने वाले हैं जिनका श्रीमुख विकसित निर्मल कमल के समान है जो समस्त देवेंद्रों के आराधनीय है तथा जिनके दिव्य चरित्र श्रुतियों के शिरोभाग में गाए गए हैं वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। रथ में बैठकर चलते समय मार्ग में मिलने वाले ब्राह्मण समुदाय के द्वारा पग पग पर अपनी स्तुतियों के प्राकट्य को सुनकर जो दया से युक्त हो जाते हैं अतएव जो दया के सिंधु है एवं समस्त जगत के बंधु कहलाते हैं वे ही श्री जगन्नाथ देव श्री लक्ष्मी देवी के सहित मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। श्री मुकुटमणि स्वरूप जो मुकुटमणि स्वरूप परम ब्रह्म है जिनके दोनों नेत्र नील कमल दल के समान खिले हुए हैं जो नीलाचल में निवास करने वाले हैं शिव जी के सिर पर अपने चरण को स्थापित करने वाले हैं एवं भक्ति रस से जो आनंदित होने वाले हैं तथा श्री राधिका के सरस शरीर को जो आलिंगन से ही जिनको सुख मिलता है वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। मैं प्रसन्न हुई ऐसे जगन्नाथ देव से राज्य नहीं मांगता हूं एवं सुवर्ण मणि माणिक्य वैभव को भी नहीं मांगता तथा सकल जन वांछनीय सुंदरी स्त्री भी नहीं चाहता किंतु जिनके चारु चरित्र श्री शिव जी के द्वारा समय समय पर सदैव गाए जाते हैं वे ही से जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। हे सूर्यपते आप मेरे असार संसार को शीघ्र ही हर लो। हे जादव पते आप मेरे उत्कृष्ट पापों की श्रेणियों को हर ले। अह जो दीन एवं अनाथ के ऊपर ही अपने श्री चरण को स्थापित करते हैं यह जिनका निश्चित व्रत है वे जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। जो व्यक्ति पवित्र एवं सावधान होकर पूर्णमय से जगन्नाथ अष्टक का पाठ करता है, श्रवण करता है, वह व्यक्ति सब पापों से रहित विशुद्ध चित्त वाला होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की पिता गुर प्रेमानंदी। जय किसकी जय मत ऐसा मत करो तो उपाधि की जय बोलो श्री कृष्ण।